జగతి జగత పతే హరే కృష్ణ. ఆజ బలరామజీ కే ఆవిర్భావ తిథి కే సమయ ఆప్ సబ్కా స్వాగత హై. మే బలరామజీ ఔర్ భగవాన్ కృష్ణ ఇన్మే జో బహుత్ హీ ఘనిష్ఠ సంబంధ హై ఔర్ ఖాస్ కర్కే జబ్ వృందావన్ సే బాహర్ జాతే హై వే జబ్ వే మథురా ద్వారకా మే హోతే హై ఔర్ కైసే బలరామజీ కృష్ణ కీ సేవా కర్తే హై అలగ్ అలగ్ భావ సే ఉస్సే మే చర్చా కరుంగా. ఖాస్ కర్కే యే ప్రవచన్ జో హై దశమ స్కంద్ కా పిచ్చట్వా అధ్యాయ జో హై ఉస్సే ఆధారిత హోగా. వహాన్ పే బలరామ జీ పునః వృందావన్ మే ఆతే హై భగవాన్ కృష్ణ కే ఏక సందేశ వాహక్ కే రూప్ మే, తో ఉస్సే కేంద్ర హోగా. పర్ ఉస్సే పహలే హమ్ పహలే జో లీలా హుయీ హై ఉస్సే బారే మే చర్చా కరేంగే ఔర్ ఉస్సే బలరామ జీ కిత్నీ మహత్వపూర్ణ సేవా కర్తే హై వృందావన్ మే ఆతే హై ఆకర్ వహాన్ హమ్ సమజ్నే కా ప్రయాస్ కరేంగే. తో బలరామ జీ యహ భగవాన్ కే సబ్సే ఘనిష్ఠ పార్షద్ హై. వాస్తవ మే వే భగవాన్ హీ హై. జైసే యస్సే కామిషేన విధృతా, జో యమునా దేవి ప్రార్థన బతా రహీ హై, యహీ భగవాన్ భగవద్గీతా మే బతాతే హై. యహ ఉన్కా విస్తర్ హై. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, దశమ దశమే అధ్యాయ భగవద్గీతా కే దశమే అధ్యాయ కే 42వే శ్లోక మే భగవాన్ బతాతే హై కి అథవా బహు నైతేన కిం జ్ఞాతేన తమ అర్జున విష్ఠభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఏకాంశేన భగవాన్ కహతే హై కి సారా విస్తార రూప్ సే మేరీ మహిమా బతానే కి జరూరత్ క్యా హై. ఏక అంశ కే ద్వారా మేనే సారే బ్రహ్మాండ కో సంభాలా హై. తో కృష్ణ ఔర్ బలరామ్ ఏక హీ హై, వో ఏక హీ వ్యక్తి హై, పర్ దో అలగ్ భావ మే హై. దో అలగ్ భావ మే హై ఔర్ అలగ్ భావ మే హోకే వే అలగ్ అలగ్ ప్రకార సే లీలా మే ఆదాన్ ప్రదాన్ కర్తే హై. తో బలరామ్ జీ కా జన్మ సే ఉన్కా సంపూర్ణ జీవన్ జో హై బహుత్ హీ రహస్యమయ హై, క్యోంకి వో జిస్ ప్రకార సే సేవా కర్తే హై భగవాన్ కీ, వా సేవా కా భావ కభీ కభీ సమజ్నా ముష్కిల్ హో జాతా హై, క్యోంకి వే కభీ కభీ బాహ్య రూప్ సే ప్రతికూల్ భావ సే భీ సేవా కర్తే హై. పర్ తో బలరామ్ జీ కా జన్మ జో హై వా రోచక క్యో హై, క్యోంకి బలరామ్ జీ జో హై వా భగవాన్ సే ఉమ్ర మే ఏక సాల్ ఛోటే హై, బడే హై బలరామ్ జీ. థోడా ఎకో హో రహా హై. హరే కృష్ణ. ఓకే, తో ఏక సాల్ బడే హై పర్ ఉన్కా జన్మ తిథి జో హై వా కేవల్ 7 దిన్ కా అంతర్ హై. తో ఈ 7 దిన్ కా అంతర్ క్యో హై, ఇస్కా జో వర్ణన్ హై జీవ గోస్వామి పాద్ అప్నే గోపాల్ చంపు నామ్ కే గ్రంథ మే కర్తే హై. తో శ్రీమద్ భాగవతం కే 335 అధ్యాయ హై 12 స్కంద్ మే, ఉన్మే సే 90 అధ్యాయ జో హై వహ దశమ స్కంద్ మే. దశమ స్కంద్ యే సంపూర్ణ భాగవతం కా ఏక తరహ సే సార సబ్సే మహత్వపూర్ణ భాగ హై. లగ్భగ్ ఏక తిహాయి జో సంపూర్ణ భాగవతం కా దశమ స్కంద్ మే హై. బహుత్ బడా స్కంద్ హై. దూసరే స్కంద్ జో ఉత్నే బడే హై 33-34 అధ్యాయ కే, వహ తీసరా హై ఔర్ 12వా హై 11వా హై. పర్ దశమ స్కంద్ బహుత్ బడా హై ఔర్ ఇస్మే జో హై పహలే 40 అధ్యాయ జో హై బ్రజలీలా కే హై, 41-50 అధ్యాయ జో హై వో మథురా లీలా కే హై, 50వే అధ్యాయ కే బాద్ మే ద్వారకా లీలా చాలూ హోతీ హై. తో యే జో 90 అధ్యాయ హై ఉస్కే ఆధార్ పర్ అనేక ఆచార్యో నో భాష్య లిఖా హై ఔర్ గ్రంథ భీ లిఖే హై. భాష్య కే అర్థ హోతా హై కి వహీ శ్లోక లియే హై, శ్లోక కా విస్తారిత రూప్ సే వ్యాఖ్యా కీ హై. ఇ శ్లోక కా అర్థ క్యా హై, ఇ శ్లోక కా అర్థ క్యా హై, ఇ శ్లోక కా అర్థ క్యా హై. తో వైసే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ నామ కే మహాన్ ఆచార్య హై, ఉన్హోనే సారార్థ దర్శిని నామ కా గ్రంథ లిఖా హై. తో ఉస్మే ఉన్హోనే భాష్య కియా హై. ఉస్ తరహ సే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ కే పహలే ఏక శ్రీనాథ చక్రవర్తి నామ కే మహాన్ ఆచార్య థే, ఉన్హోనే చైతన్య మంజూషా నామ కా గ్రంథ లిఖా హై. ఉస్మే భీ ఉన్హోనే దశమ స్కంద్ పే విస్తారిత రూప్ సే ఉస్కో విస్తార్ కియా హై. వహ భాష్య మతలబ్ క్యా కి శ్లోక లేకే శ్లోక పే వర్ణన్ కర్నా ఔర్ దూసరా హై కి గ్రంథ రచనా. గ్రంథ రచనా మతలబ్ వహీ కహానీ కహానీ లేనా పర్ శ్లోకో కే పర్ వ్యాఖ్యా నహీ కర్నా హై, వహీ కహానీ కో అలగ్ తరహ సే బతానా. జైసే ప్రభుపాద్ జీ కా కృష్ణా జో కితాబ్ హై उसमें श्लोक लेके श्लोक पे भाष्य नहीं है, वह कहानी का विस्तारण किया गया है वहां पे। तो वैसे गोपाल जंबू भी एक ग्रंथ है। जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के सिद्धांत आचार्य है, वह बहुत ही महान पंडित थे और उन्होंने अलग अलग ग्रंथों से जो दशम स्कंध ने बताया है उसका विस्तार किया है। तो खास करके हरिवंश, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, ये चार ग्रंथों से वे निचोड़ करते हैं और बहुत संशोधन करके उन्हें गोपाल चंपू में वही जो लीला है उसका विस्तार किया है। तो वे बताते हैं ये रहस्य कि कैसे बलराम जी का जन्म हुआ। तो जो कंस था वह बहुत मनमानी करने वाला व्यक्ति था। तो कभी कभी तो जब उन्होंने वसुदेव और देवकी को कैद में रखा था तभी वसुदेव की कई और पत्नियां भी थी। तो कंस कभी इतना भयभीत हो जाता था तो कभी कभी क्या कर उसको लगता था कि ये विष्णु जन्म लेने वाला है अष्टम गर्भ, वो शायद देवकी के गर्भ से नहीं जन्म लेगा, किसी और के गर्भ से जन्म लेगा। तो इसीलिए वो क्या करता था, वसुदेव की वाकई पत्नियां थी उनको भी कभी कभी गिरफ्तार कर लेता। फिर बाद में कुछ मंत्री और उसको बोलते थे इससे कोई खतरा नहीं है, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, तो फिर उनको छोड़ देते। तो वह ऐसा वह सम्राट था और ऐसा सम्राट था बड़ा मनमानी करता था। तो जब इस तरह से रोहिणी भी कैद में थी तब उनके गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए और बाद में उनको छोड़ दिया। तो फिर तभी क्या किया नंद महाराज, नंद वसुदेव ने योजना बनाई कि हम बार बार उनको परेशानी हो रही है तो गुप्त पद्धति से उनको केवल एक घोड़े पे बिठा कर वहां से बाहर भेज दिया और वहां से उनको बोला कि आप वृंदावन चले जाओ। तो साधारणतः रानी होती है, रानी रथ में पालकी में अंदर सुरक्षित रूप से जाती है, पर क्योंकि वहां पे खतरा था और वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, उसकी ओर ध्यान नहीं जाना चाहते थे, इसलिए क्या किया इस तरह से अकेले ही रोहिणी एक घोड़े पे बैठ के चली गई। और फिर उनका यशोदा माई ने बड़ा स्वागत किया और बड़े अच्छी तरह से उनका रहने की योजना कर दी। और जब इस तरह से योजना कर दी तो जब 7 महीने के गर्भ की हो गई थी वो, तभी उसी समय देवकी भी गर्भवती हुई थी। तो देवकी का गर्भ लगभग उतने ही उम्र का था, उतने 7 महीने का था। तभी योग माया ने क्या योजना की कि जो देवकी का गर्भ था वह रोहिणी के गर्भ में उसको स्थानांतरित कर दिया। जब स्थानांतरित कर दिया उसके बाद में तभी क्या हुआ था, जो ऐसे बाहर से लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है पर वास्तव में जो गर्भ गिर गया है, पर वास्तव में हुआ क्या, वह इधर चला गया। और फिर वो बलराम जी जो थे उस समय रोहिणी लगभग 14 महीने तक गर्भ में रही और 14 महीने तक गर्भ में रहने के बाद जब देवकी अष्टम गर्भ 7 महीने की हो गई थी तभी तो देवकी की जो संतान उत्पत्ति वो थोड़ी जल्दी हो गई। तो इस तरह से केवल 7 दिन का फर्क था। तो वास्तव में उम्र में एक उम्र एक साल का फर्क है पर जन्म के दृष्टि से केवल 7 दिन में जन्म का फर्क है। अभी 21 तारीख को आज बलराम जयंती है, 28 तारीख को जन्माष्टमी है। तो इस तरह से बलराम जी का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ क्योंकि दोनों संतान इतने छोटे थे, एक ही लगभग उसी उम्र के थे, तो नंद महाराज ने कहा कि ऐसे करेंगे हम, यशोदा माई और रोहिणी दोनों साथ में ही रहेंगे तो दोनों के देखभाल के लिए अलग अलग योजना करने की जरूरत नहीं है, ताकि दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों के देखभाल एक साथ हो सकते हैं। तो इस तरह से जब दोनों बालक साथ में ही रहा करते थे तो फिर छोटे बालक होते हैं तो पहले उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ रोते हैं और दूध पीते हैं और सोते हैं और कुछ समझ में नहीं आता। पर धीरे धीरे वो बड़े हो रहे तो देखे, तो बलराम ने देखा कि ये कौन है मेरे बाजू में, किसने कहा ये कौन है, और फिर बाद में उनका नामकरण हुआ। तो जब उनको बुलाते थे तो फिर जब उनको बुलाते थे तो पहले तो दोनों जितने छोटे थे कि उनको समझ नहीं आता किसका नाम क्या है, तो फिर जब राम बुलाते थे तो कृष्ण आते थे और कृष्ण बुलाते थे तो राम आते थे, पर बाद में जब राम बुलाते थे और कृष्ण आते थे और फिर वो देखते थे अरे मुझे नहीं बुला रहे, उनको बुला रहे, और फिर वो समझ अच्छा तुम्हारा नाम राम है मेरा नाम कृष्ण है, तो कृष्ण कहते थे इस तरह। और फिर इस तरह से ये बलराम जी से बड़े भाई थे इसीलिए हमेशा उनको यशोदा माई कहती थी कि तुम्हें कृष्ण का देखभाल करना चाहिए, कृष्ण बड़े नटखट है तुम उनका देखभाल करो। तो जब भी कहीं बाहर जाते थे कृष्णा खेलने को वगैरह, तो अगर बलराम जी साथ में होते तो यशोदा माई जो होती थी चिंता से उनकी चिंता कम होती थी, बलराम जी नहीं है तो चिंता बहुत बढ़ जाती थी। तो इस तरह से कई साल तक वृंदावन में उन्होंने लीला की। उसके बाद में वो, मैं वृंदावन की लीला का यहाँ पे वर्णन नहीं करूँगा, मैं वृंदावन वृंदावन का जो भाव कृष्ण और बलराम में वृंदावन के बाहर कैसे था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर उसके बाद में अक्रूर वृंदावन में आए और फिर वे कृष्ण और बलराम को लेके चले गए। कंसस्य दूते न यतो नितस्य, गोविंद दामोदर सूत्र में वर्णन आता है कि कैसे जब कृष्ण और बलराम को लेके चले गए तो सारा वृंदावन उद्ध्वस्त हो गया, उद्ध्वस्त हो गया। और ऐसे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि ब्रजवासी जो थे उनका जो जान था वो चला गया जब कृष्ण चले गए, पर वो ऐसे था कि जान तो शरीर से चला गया है पर जो प्राण अभी शरीर में है नहीं, पर प्राण को निकलने के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए अगर कोई घर में कोई व्यक्ति है वो जल रहा है घर, तो व्यक्ति सोचेगा कि मुझे घर से बाहर निकलना है, पर मान लीजिए वहां पर जो उसकी खिड़की है दरवाजा है उसको बाहर से बंद कर दिया, तो जल तो रहा है अंदर से पर कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो उस तरह से ब्रजवासियां खास करके गोपियां और गोपों का भी भाव हो गया था, क्योंकि वो कृष्ण चले गए तो उनकी जान चली गई, पर कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि मैं जरूर लौट के आऊंगा। और ये लौट के आऊंगा ये वचन था वह क्या था, गोपियों का जो जीवन है वो जल रहा था कृष्ण के विरह में, पर क्योंकि वो कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, तो वो मान लीजिए वो कमरे के दरवाजे को बंद करने वाला ताला था कि वो अपना अपने जीवन त्याग भी नहीं कर सकते, जी भी नहीं सकते थे, जीवन त्याग भी नहीं कर सकते थे। तो यह जो है विरह का भाव, यह बाह्य रूप से देखेंगे तो इसमें वेदना है, पर अंतरंग रूप से देखें तो इसमें बहुत ही बड़ा आनंद है, क्योंकि कृष्ण की स्मृति है यह बहुत ही तीव्र हो जाती है। जो विरह होता है वह प्रेम पे क्या प्रभाव करता है, प्रेम ये एक अग्नि के समान है। मान लीजिए अग्नि जल रही है और विरह जो है वह एक वायु के समान है, तो अगर वायु अगर कहीं अग्नि जल रही है, बड़ी अग्नि जल रही है और वहां पे वायु आ जाती है क्या हो जाता है, तो वह अग्नि फैलने लगती है। तो उसी तरह से जब प्रेम बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही विशाल होता है, तो विरह होता है तभी, तो फिर क्या होता है वो अग्नि और बढ़ जाती है, जो प्रेम होता है वो और बढ़ जाता है। तो राधा रानी एक प्रार्थना में कहती है कृष्ण अभी आप मुझे मेरे सामने दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको हर जगह देख रही हूँ, हर जगह मैं आपको देख रही हूँ। जब आप होते थे तो एक ही जगह पर दिखते थे, पर आप नहीं है तो हर जगह दिखते हैं आप मुझे। तो वास्तव में यह विरह का प्रभाव कब होता है, जब प्रेम विशाल है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्तों से दूर चला जाऊंगा फिर मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, वह नहीं होगा, क्योंकि अगर अग्नि छोटी सी है और तभी वायु आता है तो क्या होता है वो अग्नि बुझ जाती है। तो उसी तरह से जब हमारी जो भक्ति है, भक्ति की वास्तव में अग्नि भी नहीं है, थोड़ी चिंगारिया है, थोड़ी थोड़ी भक्ति चल रही है, तो अगर हम भक्तों से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, वो वायु आ जाएगी, वायु से बुझ जाएगी। तो हमें भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, भगवान के सानिध्य में आना बहुत जरूरी है, पर जो महान भक्त है उनके लिए विरह जो होता है वह और भक्ति का विकास करता है, भक्ति की वृद्धि करता है। तो जब कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़ के चले गए, तो बलराम जी की विशेषता क्या है, वह भगवान के ऐसे पार्षद है कि वे भगवान के हर लीला में है। अभी वृंदावन और बाहर वृंदावन के बाहर मथुरा में जो लीला हुई है संक्षिप्त रूप से लीला हुई है। आध्यात्मिक जगत में वृंदावन है और द्वारका है, आध्यात्मिक जगत में मथुरा नहीं है, मथुरा में जो लीला है वो कुछ समय के लिए हुई है। तो वृंदावन और द्वारका में जो प्रमुख लीला है, तो भगवान के जो पार्षद है कुछ पार्षद वृंदावन में है कुछ पार्षद द्वारका में है, उनके बहुत ही गिने चुने पार्षद ऐसे है जो वृंदावन में भी है द्वारका में भी है। कौन कौन है ऐसे पार्षद, प्रधान रूप से दो ही है, एक है बलराम जी और दूसरी है रोहिणी, रोहिणी भी वृंदावन में थी और वो भी द्वारका में। और कुछ पार्षद है, उद्धव है, उद्धव जी बहुत उनका विशेष भाव है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और एक और नारद मुनि वहां पर भी आते हैं, यहाँ पे नारद मुनि तो सब जगह होते हैं, पर जो भगवान के पार्षद या भगवान की लीला में हमेशा रहते हैं उनमें रोहिणी और बलराम जी दो महत्वपूर्ण हैं। और उनमें से भी बलराम जी भगवान के कनिष्ठ, हर लीला में सहभागी होते थे वो। रोहिणी जो है वो कुछ कुछ लीला में है, पर बलराम जी अगर घर में है तो कृष्ण घर में है तो बलराम जी उनके साथ घर में है, कृष्ण जंगल में है तो बलराम जी साथ जंगल में है, भगवान वृंदावन में है, भगवान द्वारका में राजमहल में है तो कृष्ण उनके साथ है, भगवान बाहर युद्ध करने जा रहे हैं जरासंध से तो उनके साथ बलराम जी है। तो बलराम जी अगर हम सारी लय देखते हैं उन सब लीलाओं में, अभी गोप राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है पर वह भी वृंदावन के बाहर की लीलाओं में नहीं है, पर बलराम जी लगभग हर लीला में है। तो जब बलराम जी और कृष्ण छोड़ के जाते हैं वृंदावन तो वृंदावन उद्ध्वस्त हो जाता है, और तभी उनके साथ कृष्ण नंद महाराज जाते हैं और यशोदा माई नहीं जाती उनके साथ। यशोदा माई वो वृंदावन नहीं रहती है, और क्योंकि वो जाने का उद्देश्य क्या होता है, नंद महाराज को आदेश आया होता है, कंस का, कंस वहां का सम्राट होता है कि आप वहां पे आओ और जो हमने एक प्रतियोगिता बनाई है प्रतियोगिता में आप सहभागी हो जाओ। तो वो प्रतियोगिता के वो एक शिव का यज्ञ होता है धनुर्यज्ञ, तो उसका प्रदर्शन करना होता है और उसकी पूजा होती है, तो वह एक उत्सव होता है और उसमें मल्ल युद्ध जो होते हैं वो करने वाले की प्रतियोगिता होती है, तो उसको देखने आप आ जाओ। तो इस तरह से जो योजना बनाते हैं तो कंस का क्या भाव होता है, कंस सोचता है कि मेरे इतने सारे असुर थे सबको मैंने भेजा सबकी मृत्यु हो गई। क्रीडनक इव मतलब कि वास्तव में क्रीड़ा के भाव में भगवान ने सारे उनके जो असुर आए थे उनको मार डाला। कि वास्तव में अगर हम वृंदावन लीला देखते हैं तो वृंदावन लीला में असुरों को मारना ये साइड शो है, ये छोटी सी बात है। तो इसीलिए भगवान वृंदावन में कभी कोई अस्त्र इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी असुर को उन्होंने मारा है कैसे मारा है, बिना किसी अस्त्र के मारा। पूतना को सिर्फ अपने जिह्वा से उसका प्राण निकाल लिया, तृणावर्त से क्या किया फ्री राइड ले लिया और उसको मार डाला। और उसी तरह से जो भी असुर है हम देखते हैं केशी को क्या किया, केशी के सिर्फ मुंह में हाथ डाल दिया मृत्यु हो गई। तो भगवान ने किसी को भी मारते समय अस्त्र इस्तेमाल नहीं किया, और इसलिए क्रीडनक इव ये उद्धव तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में वे भगवान की लीला का श्रमण करते हैं, कहते बाल क्रीडनक इव, छोटा बालक खेलता है उस तरह से उन्होंने वध किया। बलराम जी वही करते हैं, और इस भाव से क्योंकि कंस का कम सोचता है कि मेरे सारे असुरों का वध हो गया है अभी मैं क्या करूं, सोचता है कि भाई कृष्ण को मारना है तो एक ही भी उपाय है, कृष्ण को मेरे इलाके में लेके आता हूँ, मेरे इलाके में लेके आएगा तो वहां पे मेरी सेना होगी, मैं खुद होगा, मेरे मल्ल योद्धा होंगे, सब साथ में लोग मार डालेंगे, इसलिए अपने इलाके में लाने का योजना करता है। और हम देखते हैं कि जो इस तरह से जब कृष्ण आते हैं तो अभी नंद महाराज को ये पता नहीं होता है कि कृष्ण ये वसुदेव के पुत्र है। जब वो अगर हम गर्गाचार्य जो आते हैं वो कृष्ण को नाम का कृष्ण का नामकरण करते हैं तभी वो जो बताते हैं बड़ा रहस्य में बताते हैं, वह उनको अभी कृष्ण के पहचान के बारे में दो रहस्यमय चीजें हैं जो नंद महाराज को पता है पता नहीं भी है। सबसे पहले कि कृष्ण भगवान है, और दूसरा है कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। तो ये दोनों चीजें गर्गाचार्य जो है वो तो भक्त है और भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, नंद महाराज को बताना चाहते हैं कितना तुम्हारा भाग्य है कि भगवान स्वयं तुम्हारे आंगन में आए हुए हैं, तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं। पर फिर भी वो जानते हैं कि भगवान का वहां पर लीला का रस अलग है, नंद महाराज की भाव नंद महाराज जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं वह भाव कृष्ण उनके एक विशेष प्रकार की सेवा चाहते हैं, उसमें माधुर्य अधिक है ऐश्वर्य नहीं है। इसीलिए वो क्या बताते हैं उनको कि तुम्हारा जो पुत्र है वह नारायण के ही समान है, ये बताते हैं नारायण है, नारायण के समान है। और वो कहते हैं कि पहले का अर्थ निकलता है ऐसे नंद महाराज सोचते हैं कि पहले मतलब पूर्व जन्म में, पहले ये वसुदेव का पुत्र था इसीलिए इसका नाम वसुदेव सूत भी है। तो वो क्या होता है, तो इस तरह से नंद महाराज को ये पता नहीं होता है कि ये कृष्ण जो है वसुदेव का पुत्र है। तो फिर भी तो जब ये कृष्ण कृष्ण को अक्रूर आके बताते हैं कि तुम वास्तव में वसुदेव के पुत्र हो, तो कृष्ण और बलराम, वो बलराम को बताते हैं कि तुम भी वसुदेव के पुत्र हो, तो कृष्ण बलराम एक दूसरे को देखने लगते हैं। और वास्तव में इसके पहले नारद मुनि भी कृष्ण को यही बताते हैं। तो कृष्ण सोचने लगते हैं, बोलते कि ऐसे लग रहा है मुझे कोई पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है, मैं तो ये जन्म में तो मैं तो यशोदा का पुत्र हूँ, मैं नंद का पुत्र हूँ, मैं तो नहीं हूँ। पर वो बोलते हैं कि कर्तव्य है, जाना है। जाते हैं तो वृंदावन से मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो मथुरा में कृष्ण और बलराम और उनके साथ सारे उनके सखा भी है। तो वो अलग अलग प्रकार से मथुरा में जाके चीज़ों का दर्शन करते हैं। और फिर वहाँ पे वो देखते हैं वो शिव चाप है, शिव जी का धनुष है, और उसका प्रदर्शन हो उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भगवान जाके उसको, भगवान और बलराम जी दोनों जाके उसको तोड़ देते हैं, उसको उठाते हैं, भगवान तोड़ देते हैं और तोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो एक टूटा हुआ हिस्सा है वह बलराम जी को दे देते हैं। और फिर सारे कंस के सैनिक आते हैं, वह भयभीत और क्रोधित दोनों हो जाते हैं। भयभीत हो जाते हैं कि किसकी इतनी शक्ति है, वो धनुष शिवचाप जो होता है इतना शक्तिशाली होता है कि 300 लोग उसको उठाने के लिए लगते हैं, उठाने के लिए हिलाने के लिए 300 लोग लगते हैं, उठाना तो छोड़ ही दो उसका। पर कृष्ण आराम से उठा लेते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं। तो वो भयभीत, क्यों, कौन है इतना शक्तिशाली। और दूसरा वो लड़ जाते, क्रोधित हो जाते हैं कि हमें इसे संरक्षण करने वाले कौन, ये आ गए इसे तोड़ दिया। तो वो आक्रमण करने लगते हैं, तो आक्रमण करने लगते हैं। तो वही जो धनुष है उसके दो विभागों को इस्तेमाल करके कृष्ण और बलराम उन सबका अंत कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जब इस तरह से कृष्ण और बलराम लीला कर रहे होते हैं, तो जब वो धनुष टूटता है तो ऐसा आवाज आता है कि मानो पृथ्वी टूट गई हो, बड़ा भूकंप हो गया हो और पहाड़ एक जगह से दूसरे से गिर गए। तो जो वो जो गड़गड़ाहट जैसे आवाज होती है, तो वह तीनों लोकों में जाते हैं और देवता देखने से क्या हो गया, कम से डर जाते हैं, क्या है बोलता है, क्या है। तो उस बंदे से आवाज बोले, वो डर जाता है, क्या बोलो, क्या हुआ बोलो। बोले, आप मुझे मत मारना, मैंने कुछ गलती नहीं की है, बोलो क्या हुआ है। बोले, आपका जो धनुष है वो टूट गया। टूट गया कैसे, टूट गया। बोले, कृष्ण भगवान तो तुरंत कम से अपने महल से बालकनी में आ जाते हैं और देखते हैं क्या है, कौन है वो। वही है वो दो, कौन दो, वो दो। और बोलने को डर रहा है लेकिन धनुष को तोड़ दिया है। और देखते हैं उनके शरीर पर लाल लाल क्या है, बोलते हैं वो तुम्हारे सैनिकों का खून है, सबको मार डाला है। तो फिर उस तरह से फिर कृष्ण इस तरह से पराक्रम करते हैं। और फिर वो अगले दिन, तो कम से उस दिन रात को सो नहीं पाता है, क्या हो रहा है। और फिर बाद में अगले दिन जब मल्ल युद्ध होने वाला होता है, तो उस समय कृष्ण और बलराम दोनों साथ में आते हैं। और उनको पहले बताया नहीं जाता कि आपको मल्ल युद्ध में युद्ध करना है, उनको बुलाया जाता कि आप सिर्फ देखने को आ जाओ। तो फिर वहां पे जब आते हैं, तो वो कुंवल यापी नाम का विशाल हाथी होता है, तो वह कृष्ण को मारा जाता है, कृष्ण उसका उसका उद्धार कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो प्रवेश करते हैं, तो दूर से वो कंस अपने बड़े आसन से बैठा हुआ है, और एक कंस और चाणूर मुष्टिक आदि ये सब मल्ल योद्धा जो है वह कृष्ण को बुलाते हैं। और कृष्ण, आओ, आप तो बड़े पहलवान हो, हमसे युद्ध करो और राजा को प्रसन्न करो। तो कृष्ण बलराम जो होते हैं ये इस तरह से लीला करते हैं, हम तो बालक है, हम तो यहाँ पे आपका मल्ल युद्ध देखने आए हैं, हम क्या मल्ल युद्ध करेंगे। नहीं, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, आपने बड़े बड़े असुरों का वध किया है, आप हमसे जरूर युद्ध कर सकते हो। तो इस तरह से जब वो बोल रहे हैं, तो अंदर से वो सोचते हैं कि ये कम से कम वो क्या बोला है, और किसी को मारना भी है तो कोई अच्छा मैच होना चाहिए। अगर कोई भारत का इंटरनेशनल टीम है और उसको बोलेंगे कि कोई मीरा रोड गली क्रिकेट खेलने वाला टीम है उनसे आप खेलो, क्या हमारा जो अवकाश है उसके नीचे है। तो वो सोचते हैं कि हम तो इतने बड़े योद्धा है और ये छोटे बालक इनसे युद्ध करने को क्या बोला है आपको, तो फिर भी अगर बोला है तो हम युद्ध कर लेंगे बोलते हैं। इस तरह से वो पहले बहुत कृष्ण का अंदर से कृष्ण को बहुत कम मानते हैं। कृष्ण बलराम कहते हैं कि वास्तव में हमने किसी को मारा नहीं, वो पूतना जब आई थी तो उसका काल का समय आ गया था, तो जब मैं उसका दूध पी रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई। तृणावर जब मुझे हवा में लेके जा रहा था तभी उसका काल आ गया तो उसकी मृत्यु हो गई। ये सारे असुर जो थे काल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। किसी तरह से मैं उस समय वहां पर था इसलिए लोगों ने सोचा कि मैंने उनको मारा है, पर वास्तव में मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो शक्ति नहीं है, मैं तो आपका युद्ध देखने आया हूं, मुझे तो मल्ल युद्ध मैं तो मल्ल युद्ध जानता भी नहीं हूं। तो मुश्ती कहने लग गया कि नहीं नहीं वास्तव में हम जानते हैं कि तुम तुम्हारे गोपों के साथ जब वृंदावन से बाहर जंगल में जाते हो तो जब गैया खा रही होती घास तभी तुम मल्ल युद्ध करते हो, तो तुम मल्ल युद्ध जानते हो। वो तो हम बच्चों का खेल है, वो तो आप जैसे महारथियों के मल्ल युद्ध के समान नहीं है, तो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, ये राजा का आदेश है। तो जब इस तरह से कहते हैं तो कृष्ण बलराम कंस की ओर देखते, कंस बड़े गर्व से बैठा हुआ है अपने आसन पर, और सारे जो वहां पे प्रेक्षक गण है वो कहने लगते हैं कि ये तो बड़ा अन्याय है कि कृष्ण बलराम छोटे से बालक है, इनका इतने बड़े बड़े मल्लाओं से युद्ध कैसे हो सकता है। और फिर कृष्ण बलराम युद्ध करने लगते हैं, और जब उनसे युद्ध करने लगते हैं तो कंस जानो ऐसे मारे के नृत्य कर रहे हैं, तो पहले तो उनको मुष्टिक चाण उनको लगता है कि आराम से इनको हरा देंगे, पर बाद में जो भी वो उस पर वार करते हैं उसका प्रतिकार करते हैं कृष्ण, और इतना दक्षता से करते हैं कि उनको लगना चाहिए क्या चल रहा है, इतने दक्ष कैसे हैं, और बाद में देखते कि इतने हमसे हमारे इतने दक्ष नहीं हमसे अधिक दक्ष है। और जैसे खेल चल रहा होता है कम से देख रहा होता अभी जीतूंगा अभी जीतूंगा अभी जीतूंगा अभी मेरा पक्ष जीत जाएगा, तो क्या होता है फिर एक प्रहार करते कृष्ण एक प्रहार करते बलराम जी मल्ल जो मल्ला होते उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरे मल्ला आ जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से सारे जो कंस के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो मल्ला करने योद्धा थे वो सबकी मृत्यु हो जाती, बाकी जो बच जाते हैं वो भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद में अभी कृष्ण क्या करते हैं अपने गोपों को बुलाते, तो गोपों को बुलाते और उसी प्रांगण में अपने गोपों से वो मल्ल युद्ध करने लगते हैं और खेल के रूप में। और कंस अभी आग बबूला हो रहा है अंदर से, मेरे ही इलाके में आके मेरे सारे योद्धाओं को मार डाला, और उतना ही नहीं और उसको और बुद्ध आता है कि मेरे बाकी जो योद्धा थे भाग गए यहां से, ये सोच रहा है क्या करे। और अभी कृष्ण बलराम सुदामा शोक कृष्ण इनके साथ मल्ल युद्ध करते हैं, और कंस के सामने कंस को और मोहित करने के लिए कृष्ण अपने गोपों के साथ मल्ल युद्ध में हार जाते हैं, बलराम जी भी हार जाते हैं। यह देख के तो कंस को समझ में क्या हो रहा है, मेरे बड़े बड़े मल्ल युद्ध को हरा दिया और फिर ये अपने गोपों से हार गए, क्या चल रहा है। और फिर आधे घंटे तक वहां पे उसी प्रांगण में अपने गोपों के साथ वो खेलते हैं मल्ल के युद्ध में, और वहां पे संगीत चल रहा है, ये जो युद्ध होता है तो एक महोत्सव के रूप में होता है। और फिर बाद में कंस देखता है बहुत हो गया, ये कंस आदेश देता है कि जो नंद महाराजा है उनके सारे धन को लूट लो और उनको गिरफ्तार कर लो। जब कृष्ण ऐसे सुनते हैं तो कृष्ण बोलते बहुत खेल हो गया। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, और कंस सोचता है कि मैंने बहुत लोगों को अभी भेजा है कृष्ण को मारने के लिए, कुछ नहीं हुआ मैं खुद उसको मार दूंगा, तो इसीलिए वो अपने तलवार निकालते हैं गदा निकालते हैं और वह घुमाने लगते। तो तभी कृष्ण सोचते हैं कि बहुत कर लिया अभी कंस ने अपना नाटक, तो कंस ऊपर ऊंचे आसन पर बैठे होते हैं, तो जैसे कोई मैच चल रहा होता है तो एक स्टेडियम होता है और एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड में खेल चल रहा होता है स्टेडियम में बाहर लोग प्रेक्षकगण बैठते हैं, तो जो राजा ऊपर आसन पे प्रेक्षक के रूप में बैठा होता है कंस। तो कृष्ण क्या करते हैं नीचे होते तो कंस भी तैयार हो रहा है, मैं मेरे तलवार से सिर काट दूंगा, तो वो तलवार घुमा रहे तो कृष्ण नीचे से कूदते सीधा कंस के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वो अपने तलवार घुमाने के पहले उसको पकड़ लेते हैं, तो उसकी तलवारें जो चले जाती है उसकी गदाएं उसकी ढाल जो चली जाती है, और गले से पकड़ के उसको पीटने लगते हैं, ऊपर से खींच के नीचे गिरा देते हैं उसको, और वहीं पे ऊपर घुमा रहे होते तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। पर नीचे गिरते हैं तो सारे जो यदुवंश के लोग होते हैं वह कंस के आतंक में रह रहे होते हैं, और खास करके वसुदेव और देवकी वह सोच रहे थे कि कृष्ण को बचाने के लिए हमने इतने संकट मोल लिए, जैसे जन्म हुआ उसको वहां से हम लेके चले गए, उसके उसके विरह में हम रहे, पर अभी कृष्ण वापस कंस के चंगुल में आ गए, क्या होगा? तो भयभीत हो रहे होते तो वसुदेव और देवकी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, कंस की लाश घुमाता है इधर उधर। और फिर वास्तव में कंस को एक वर मिला होता है कि विष्णु के अलावा और कोई इनको मरवध नहीं कर सकता, तो इसलिए कृष्ण उनका वध करते हैं। पर कंस के बाकी जो कंस आदि भाई होते हैं तो कृष्ण सोचते हैं कि वास्तव में मुझे उसका, ये मेरे मामा के समान है, इनका मुझे वध नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं कि बलराम जी आप संभालो। तो फिर कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण वो बलराम कृष्ण वहां पे प्रेक्षक के रूप में देखते हैं और बलराम जी अपनी सामर्थ्य दिखाते हैं, और कंस के जितने भी भाई होते हैं जो आते हैं, कंस का आदि आठ भाई होते हैं, सबका उनका वध कर देते हैं बलराम जी अकेले। और यहाँ पे जो कृष्ण और बलराम है वह साथ में जो यदुवंश का आतंक करने वाले कंस है उनके आतंक का अंत कर देते हैं। और फिर उसके बाद में सारे जो यदुवंशी होते हैं वह अभी तक आश्चर्य देख रहे हैं क्या हो रहा है, और फिर वो कृष्ण और बलराम जी का आलिंगन करते हैं और फिर वो अंदर लेके आते। तो वहां पे अभी जो कंस होता है उसके पिता होते हैं उग्रसेन, और वह आते हैं और वह क्या करते हैं, कंस का जो सिंहासन होता है, कंस का जो क्राउन होता है, उसका जो व्हाट इज क्राउन, मुकुट होता है, सॉरी जो मुकुट होता है, वह मुकुट लेके और फिर कृष्ण के सामने आते हैं। और वह बड़े भयभीत होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, वो भयभीत नहीं, वो जानते हैं कृष्ण मुझे कुछ करेंगे नहीं, पर भयभीत लज्जित होते हैं कि मेरा पुत्र जो था उसने सबको इतना, कृष्ण को सारे रिश्तेदारों को इतना परेशान किया, और वह राजमुकुट लेके अभी कृष्ण को अर्पण करने वाले होते हैं। तो तभी क्या होते हैं, सारे यदुवंशी वहां पे आ गए होते हैं और कृष्ण और बलराम बीच में बैठे होते हैं, उनके एक बाजू में नंद महाराज बैठे हैं, नंद महाराज खड़े, दूसरे बाजू में अक्रूर खड़े हैं। तो जो नंद महाराज है वो जो सारे यदुवंशियों में वरिष्ठ लोग हैं उन सबका परिचय कृष्ण और बलराम जी कराते हैं, और वहां पर जैसे युवा लोग हैं तो नंद महाराज और जो नंद महाराज और वसुदेव एक तरह से भाई के समान है वो, तो इसीलिए जो उनके उम्र के सारे यदुवंशी है उनको नंद महाराज जानते हैं। पर क्योंकि बाद में कंस का जब आतंक फैल गया था तो ये सारे यदुवंशी इधर उधर चले गए थे और उनमें ज्यादा संबंध नहीं था, तो इसीलिए सारे युवा यदुवंशी जो थे उनको वो जानते नहीं थे, तो इसीलिए जो वरिष्ठ यदुवंश है उनका परिचय नंद महाराज कृष्ण बलराम से कराते हैं। और फिर बाकी सब जो है युवा जो है अक्रूर जो है, अक्रूर क्यों, क्योंकि अक्रूर कृष्ण बलराम को जानते हैं, अक्रूर भी वृंदावन से उनको वृंदावन से मिले, वृंदावन से लेके आए हैं उनको, तो उनका सब परिचय करा रहे होते। तभी सब जो देखते क्या उग्रसेन वहां पे आए हैं, तो जब अभी जानते हैं वसुदेव नंद महाराज की ये उग्रसेन एक तरह से राजा है, तो इसीलिए वो सब खड़े हो जाते हैं। और फिर उग्रसेन बड़े लज्जित होकर कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा क्रूर पुत्र मुझे जन्म हुआ था, उसका अंत करके तुमने हम सबका कल्याण किया है, जिसके पास शक्ति है वही राजा बनना चाहिए, तो इसीलिए आप कृपया राजा बन के सारे यदुवंशों का संरक्षण करो। तो तभी कृष्ण अंदर रूप स्मित करते हैं, वो कहते हैं कि आप सबसे वरिष्ठ हो और वास्तव में आप ही राजा थे, पर ये कंस के अत्याचार के कारण आपका राज्य आपसे छीन लिया गया, तो कृपया आप राजा बनो और मैं तो केवल आपका सेवक हूं, मैं आपके सेवक के रूप में आपका जो राज्य छीन लिया गया था वह आपको लौटाने के लिए आया। और तो फिर यह जब इस तरह से बोलते हैं कृष्ण, तो सारे यदुवंशी उनके नम्रता उनके आदरशील भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और वही जो राजमुकुट होता है जो उग्रसेन उनके लिए लेके आया है, उग्रसेन के हाथों से लेके उग्रसेन के ही सिर पे वो पहना देते हैं। और फिर इसके बाद में वो कहते हैं कि अभी अभी आप हमें इजाजत दीजिए, कृष्ण बलराम कहते हैं कि मेरा तो जो हृदय है वृंदावन में है, मेरा राज्य वृंदावन में है और मैं वृंदावन में लौट जाना चाहता हूँ। तो बलराम जी जो है वह अभी कृष्ण और बलराम में विरह का भय होता है, क्योंकि बलराम जी कहते हैं कि मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, अगर आप वृंदावन जाओगे तो मैं भी वृंदावन जाऊंगा। तो इस तरह से जब बोलते तो विकद्रु नाम के एक यदुवंश में वरिष्ठ राजा होते हैं, वह कहते हैं कि अभी पहले तो हमारा एक ही व्यक्ति का भय था कम, उसका अगर हम संभाल लेते तो बाकी और किसी का भय नहीं होता था हमें, पर अभी कंस को मार डाला है तो यदुवंश की जो संपत्ति है, राज्य है, उसको छीनने के लिए सारे विश्व भर से अलग 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 जो क्रूर राजा है वो आ जाएंगे। और उतना ही नहीं, कंस का जो रिश्ता है वो जरासंध से है, तो जरासंध की जो पुत्री थी उनका विवाह कंस से हुआ था, तो वह जरासंध भी प्रतिकार करने, बदला लेने आ जाएगा। और वास्तव में विक्रमादित्य कहते हैं जो भविष्यवाणी हुई थी कि वसुदेव और देवकी का आठवां पुत्र जो है वह कंस का वध करेगा, और आपने कंस का वध किया है, इसका मतलब यह है कि आप वसुदेव और देवकी के पुत्र हो, आपका जो घर है वह वृंदावन नहीं है, वह मथुरा ही है, तो कृपया आप यहाँ पे रह लो आपका। और इतना ही नहीं, आप तो धर्मज्ञ हो, तो मुझे आपको क्या धर्म है बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो बोलते शांत हो जाते हैं, तो कृष्ण बलराम में धर्म संकट में पड़ जाते हैं। बलराम किसके पुत्र है उसके बारे में कोई संदेश नहीं है, बलराम जी तो वसुदेव के पुत्र है रोहिणी के द्वारा, तो इसलिए कृष्ण बलराम सोच में पड़ जाते हैं क्या करना है। और फिर तभी वहां से निकलते हैं कृष्ण बलराम, और वो कहते हैं वो वसुदेव देव के पास जाते हैं, तो वसुदेव देव के पास जाते हैं तो वो उनको आलिंगन करते हैं। और जब इस तरह से वो आलिंगन करते हैं तो वो कहते, इसके पहले वास्तव में जो विकर्द्र से बोलते हैं वहां से बाहर आते हैं, वो तो बाहर आते हैं तो वहां पे कृष्ण देखते हैं किसी को, और वहां दौड़ते हो जाते हैं और किसी को आलिंगन कर लेते हैं। देखो तो सब लोग देखते कौन है ये, तो वो व्यक्ति कौन होता है, वह होता है उद्धव। तो उद्धव यह इसके पहले कृष्ण और उद्धव की कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर उद्धव और कृष्ण लगभग एक ही उम्र के हैं, और जो उद्धव होते हैं बचपन से ही कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण उनके हृदय में वास करते हैं, तो कृष्ण पहचान लेते उद्धव को, उनके बारे सुना के और वो बड़े आनंदित होते हैं कि वास्तव में तुम और हाँ मैं एक ही हूँ, मेरा जो प्राण है वो बाह्य रूप से तुम में है। बड़े स्नेह से वो बातचीत करते हैं, आलिंगन करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं उनके। और फिर बाद में वे वसुदेव और देवकी के पास जाते हैं, और वसुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि वसुदेव देवकी को बड़ा आदर से देख रहे होते, पहले तो उनको मात्र वात्सल्य भाव होता है, पर जब कृष्ण की शक्ति देखते हैं वो तो वात्सल्य भाव कम हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कितने बड़े शक्तिशाली है, तो वो उनका आदर करते हैं, कहते हैं कि अभी हम वृंदावन लौट जाना चाहते हैं, जैसे हम आए थे वैसे जाना चाहते हैं। तो वसुदेव कह रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि बचपन से हमारे पुत्र था हम आपको देख नहीं पाए, अभी कंस के आतंक कारण नहीं देख पाए, अभी कंस चला गया है, अभी आप चले जाओगे तो जिस चीज के हम इंतजार कर रहे थे कि तुम वापस आ जाओगे, कंस के सारे आतंक जो चल रहे थे, सारा त्वचा चल रहा था, वो सब हम सहन इसलिए कर रहे थे कि एक दिन तुम्हारा संग मिलेगा, अभी कंस चला गया है पर अगर तुम भी चले जाओगे तो वो सारा जो अत्याचार था, सारा जो दुख था, वो सहन हमने किस लिए किया, हम जिए किस लिए। इस तरह से कृष्ण सुनते हैं, विचार में पड़ जाते हैं, और फिर वो जाते हैं नंद महाराज के पास, और नंद महाराज के पांच भाई हैं, तो उनके चार भाई नंद महाराज और उनके तीन भाई यहाँ पर मथुरा में आए, यहाँ पे पर वृंदावन में भी कोई तो वरिष्ठ व्यक्ति जो इसलिए उपानंद जो होते वृंदावन में रहे होते। जैसे ही कृष्ण आते हैं तो सारे जो गोप होते हैं मथुरा के बाहर, उन्होंने अपना एक प्रांगण बना लिया होता है, वहां पर रह रहे होते हैं, तो वहां पर कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि उग्रसेन और ये सब बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि यदुवंश के लोगों का रक्षा करना है। और फिर साथ साथ ये बताते हैं कि वो जो भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी से ये इस तरह से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वास्तव में मैं ही उनका आठवां पुत्र हूँ, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, पर वास्तव में मैं जानता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो जब नंद महाराज सुनते हैं तो नंद महाराज की आंखों से आंसू आने लगते हैं, बोलते थे हे कृष्णा, वृंदावन में भी अगर आप कुछ समय के लिए हमारे दृष्टि से दूर चले जाते हो तो हम सहन नहीं कर सकते, अगर आप इतने दूर रहोगे हमसे तो हम कैसे जी सकते हैं। तो वो कहते हैं, नंद महाराज याद करने लगते हैं कि जब मैं पहले यहाँ पर वृंदावन से मथुरा आया था, तो दशम भारत में दशम के 5वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि जब यहाँ पर मिलने आया था तभी वसुदेव ने मुझसे कहा कि काफी समय तक आप प्रयास कर रहे थे पर आपको कोई पुत्र नहीं हुआ, अभी वृद्धावस्था में तो पुत्र होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, पर फिर भी आपको पुत्र हुआ है यह बड़े भाग्य की बात है आपकी। तो वो सोचते हैं तभी वसुदेव ने कहा था कि कृष्ण मेरे पुत्र है, अब वसुदेव ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये कृष्ण उनका पुत्र है। तो फिर भी वो सोचते हैं कि ये हमारा भाग्य ही है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, नंद महाराज सोचते हैं कि मैं तो छोटा छोटे गांव का सरपंच के समान हूँ, वृंदावन का ऐश्वर्य बहुत है, पर सोचते हैं गांव का सरपंच हूँ, वसुदेव तो सारे यदुवंश के राजा है, कहते हैं कि बड़े लोग हमारे पुत्र को अपने पुत्र के रूप में कह रहे हैं, यह तो हमारे भाग्य की बात है। सारा गिरधारी भगवान की जय। तो कृपया, तो हमारा भाग्य ही है। और वो कहते हैं कि अगर तुम वृंदावन में नहीं रहोगे, तुम द्वारका, तुम मथुरा में नहीं रहोगे, तो यहाँ पे मथुरा वासियों को के जीवन को खतरा है, पर अगर तुम वृंदावन में नहीं आओगे तो वृंदावन के वासियों के जीवन को खतरा है, यहाँ पे शत्रुओं के आतंक आक्रमण से खतरा है, वहां पे तुम्हारे न होने के तुम्हारे विरह के दुख से खतरा है, दोनों जगह खतरा है, अभी हमें क्या करूं। तो तभी महाराज कृष्ण कहते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ और कुछ ही समय में आ जाऊंगा, है कि बोले कि मैं रह नहीं सकता तुम्हारे, और यशोदा माई भी रह नहीं सकती है। नंद महाराज कहते हैं कि अभी कृष्ण बलराम साहब ने कहते हैं कि यशोदा माई को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यशोदा माई अगर मैं देखो कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ तो वो जी नहीं पाएगी, मैं यशोदा माई को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं अगर यशोदा माई को आप यहाँ पे लेके आओगे तो फिर सारा वृंदावन, अगर आप नहीं होगे, मैं नहीं होगा, आप नहीं होंगे, यशोदा माई नहीं होंगे, तो सारे वृंदावन की प्रजा का देखभाल कौन करेगा, सारा वृंदावन दोष हो जाएगा। तो फिर कहें कोई बात नहीं, सारे वृंदावन को यहीं से लेके आएंगे, हम आपके संग में तो रहेंगे। तो कहते हैं कि वृंदावन को आप लेके आओगे पर वृंदावन के सारे ब्रजवासी ये तो गैयाओं के सेवक है, तो गैयों को क्या करेंगे, बोले गैयों को भी हम यहाँ पे ले आएंगे। बोलते कि वास्तव में अभी आपकी गैया जो है असंख्य मात्रा में है, आपकी गैया इतनी विशाल मात्रा में है कि ये मथुरा के आजूबाजू में गैयों को घास खाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो आप कैसे रहेंगे वहां पे। तो फिर वो कहते हैं कि जब ऐसे सोच रहे होते तो सोच में पड़ जाते हैं महाराज, तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, बोलेंगे हम जाएंगे और हम बार बार आते रहेंगे आपसे मिलेंगे। लेकिन नहीं, कृष्ण गंभीर रहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में अभी जरासन पता है कि कंस के वध के बदला करने के लिए आक्रमण करने आ जाएगा, और जब आक्रमण करने आएगा तो यदुवंशियों को संरक्षण करने के लिए मैं एक किला बनाऊंगा और किले के अंदर उनको रख लूंगा, पर आपकी गैया, हमारी वृंदावन की गैया तो इतनी है कि उन सबको हम किले में बंद करके नहीं रख सकते, तो इसीलिए उनका संरक्षण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका संरक्षण करना है तो एक ही मार्ग है, क्या मार्ग है, तो अगर सारे ब्रजवासियों को संरक्षण करना है वो उसके लिए एक ही किला सशक्त है, सारे वृंदावन वासी इतनी संख्या में है, गैया इतनी संख्या में है, और गैया को घास लगेगा वो अगर उसको बनाना है तो उसका इतना बड़ा किला बनाना संभव नहीं है, तो अलग प्रकार का किला चाहिए। वह किला क्या है, वह किला है अज्ञान का किला, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका और मेरा कोई संबंध है, तो इसीलिए जो मेरे शत्रु है वह आप पे आक्रमण करने कभी नहीं आएंगे, अगर उनको लगेगा कि आप में और मुझ में प्रेम का संबंध है तो मुझ में मुझ पे बदला लेने के लिए वे आप पे आक्रमण करने आ जाएंगे और वृंदावन को उद्ध्वस्त कर देंगे और मैं वो कभी सहन नहीं कर सकता। तो मैं एक समय वृंदावन और मथुरा दोनों का संरक्षण नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आपका संरक्षण होना है तो सारी दुनिया को ऐसे लगना चाहिए कि आप में और मुझ में कोई प्रेम का संबंध नहीं है, सिर्फ क्योंकि वृंदावन खतरा था इसीलिए कुछ समय के लिए मथुरा से वृंदावन में मुझे लेके गए और फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए मैं था और अभी वापस आ गया। तो मैं यदुवंश का ही सदस्य हूँ, इस भाव से रहना चाहिए मुझे। तो इसीलिए आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आके रहोगे, अगर आप यहाँ पे बार बार आते रहोगे तो तुम्हें सबको पता चल जाएगा और फिर आपके लिए बहुत खतरा हो जाएगा। और अगर आप कुछ खतरा होगा तो मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। तो कुछ ही समय की बात है, मैं सारे यदुवंश के शत्रुओं का वध कर दूंगा और मैंने से वादा किया वृंदावन लौट आ जाऊंगा। इतने प्रश्न बोलते हैं तो मान लीजिए नंद महाराज के हृदय पे वज्र का प्रहार हो रहा है कि न केवल कृष्ण को छोड़ के जाना है पर कि हमारा कृष्ण से प्रेम का संबंध है यह भी बताना नहीं है। सबसे पहले वास्तव तीन वज्र थे। पहला वज्र क्या है कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव का पुत्र है, यह सहन करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है कि कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, हमें कृष्ण छोड़ के जाना पड़ेगा। तीसरा है किसी को बोलना भी नहीं, सारी दुनिया को ऐसे लगना चाहिए कि कृष्ण ये किसके पुत्र है, कृष्ण ये वसुदेव के पुत्र है और हमारा कोई संबंध भी नहीं है। तो नंद महाराज रोने लगते हैं, कृष्ण भी रोने लगते हैं और फिर कहते हैं, वो आलिंगन करते हैं, नंद महाराज कहते हैं कि यशोदा माई तुम्हारी बात को मान लेंगे पर तुम्हारे सारे ग्वाले हैं वो कैसे मानेंगे। बोलते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी स्मृति के रूप में उनके साथ आ जाऊंगा और सदैव वो मेरा स्मरण करेंगे तो स्मृति के रूप में मुझे याद करेंगे और वे साथ में ही रहेंगे। तो फिर कृष्ण को नंद महाराज सोचने लगते हैं, फिर बोले गैयाँ क्या करेगी। तो कहते हैं गैयाँ जो है वह तो मेरा विरह सहन नहीं कर पाएगी, पर गैयाँ जो है वह अधिकांश रूप से सुगंध और रूप को देखती है, तो स्तोक कृष्ण जो है वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं और सुबल जो है वो बलराम जैसे दिखते हैं। तो मैं मेरे जो वस्त्र है तो कृष्ण को दूंगा और बलराम आपके वस्त्र सुबल को दे देना। तो जो मेरे वस्त्र वो पहन लेंगे तो मेरे शरीर का सुगंध जो है वो उनके शरीर के सुगंध से आ जाएगा और जब गैयाँ इस तरह से मेरे सुगंध को देखेगी, सुगंध को सूंघेगी और देखेगी कि कृष्ण बलराम जैसे ही दिख रहे हैं तो उससे वो संतुष्ट हो जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि यशोदा मैं सहन नहीं कर पाएगी, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके लिए खत लिखता हूँ। और खत लिखने लगते तो अभी वहां पे तो कृष्ण जो उनके साथ में आए तो कृष्ण सुबह ये सब रोने लगते हैं और जब वो कृष्ण खत देते हैं तो खत देख के पढ़ने लगते हैं तो सब विष्णु से आते बोले कि पहले दिन वो कृष्ण क्या खत में लिखा होता है कि पहले दिन चिरा दही था, दूसरे दिन तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे वो सब वर्णन करने लगते हैं। तो बोले क्या ये खत, तो कहते हैं तो खत क्या होता है यशोदा भाई, जिस दिन से मुझे स्मृति है कि मैं खा रहा हूं तो आपने मुझे क्या क्या व्यंजन खिलाए हैं वो सब मुझे आज तक याद है और मैं आपके घर का आपके स्तन का दूध पिया हूँ, आपके हाथ से जो आपने बड़े प्रेम से अन्न पकाया वो खाया है मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पे बड़े ऐश्वर्य से बनाए हुए व्यंजन खा रहा हूँ पर मुझे आपने जो प्रेम से बनाया था वही याद आता है, मैं उसी का याद करते हुए जीवन गुजारूंगा और जल्दी ही मैं लौट के आ जाऊंगा। और इस तरह से जब अभी जो मथुरावासी होते हैं उनको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कृष्ण उनको छोड़ के चले न जाए, इतने समय के बाद कृष्ण आ गए तो वो न केवल कृष्ण को जाने का डर होता है पर सोचते हैं कि कृष्ण को ज्यादा ये ब्रजवासी का रहना भी नहीं चाहिए तो संदेश बुला के कृष्ण बुला लेते हैं। तो वहां पर बलराम जी होते हैं, बलराम जी नंद महाराज के साथ लौटने लगते हैं, नंद महाराज जा रहे होते हैं तो बलराम जी कहते हैं कि वास्तव में आप ही मेरे पिता हो क्योंकि जब मैं आप मेरा कोई नहीं था आपने मुझे पिता के समान स्नेह दिया है, आपने मेरी देखभाल की है, आप ही मेरे असली पिता है। सदानंद महाराज बलराम जी का आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं कि राम अभी कृष्ण नहीं है तो मेरे शरीर से मेरी जान ही चली गई है। मैं जानता हूँ कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण हमसे विरह मुझसे विरह हो जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, अगर तुम भी कृष्ण के साथ नहीं रहोगे तो कृष्ण का क्या होगा मुझे पता नहीं है, कृष्ण तुम्हारे साथ रहेंगे तो मुझे सांत्वना आएगी, कृपया कृष्ण के पास जाओ। तो बलराम जी इस तरह से वो सोचते हैं कि कृष्ण कुछ नहीं होते, इसलिए दौड़ते दौड़ते जाते हैं और कृष्ण और बलराम जी आलिंगन करते हैं और जो राजमहल होता है राजमहल के अकेले कोने में जाते हैं और वो आलिंगन करते हुए ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, नंद महाराज यशोदा माई सारे ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, रोते हैं और रोते हुए अपना दिन गुजारते हैं। इस तरह से जो कृष्ण और बलराम अभी वृंदावन में इतनी मधुर लीला है, वो मधुर लीला केवल एक स्मृति के रूप में रही है और वो स्मृति भी ऐसी है कि वो जब मथुरा में है और कोई समझता भी नहीं है। तो कृष्ण और बलराम ये एक दूसरे का संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ पहले संबंध है, पर यहाँ पे वृंदावन की स्मृतियों को पुनः याद करना दोहराना वो केवल वो दो ही कर सकते हैं, तो इसीलिए वो याद करते हुए अपना समय गुजारते हैं और उनका संबंध और घनिष्ठ हो जाता है जब मथुरा में आते हैं। और वसुदेव फिर देखते हैं कि एक कृष्ण बलराम है वो देवकी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, कि छोटे बालक है मान लीजिए वो किसी एक स्त्री के साथ 10 साल तक रहे हैं और अचानक किसी और स्त्री के पास आ गए, उसको बोले कि अभी ये तुम्हारी माँ है, तो भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कि माँ के रूप में बुलाकर माँ नाम संबोधित करके और जो स्नेहपूर्ण संबंध होता है वो प्रस्थापित नहीं कर पा रहे, तो वसुदेव फिर क्या करते हैं एक संदेश भेजते हैं नंद महाराज को और कहते हैं कि जब आप यहाँ पे आए थे तभी मुझे याद करना चाहिए था पर मैं भूल गया कि कृपया अभी यहाँ पे वृंदावन अभी यहाँ पे मथुरा में कोई खतरा नहीं है, इसीलिए रोहिणी को आप वृंदावन से मथुरा भेज दो। तो जब ये संदेश मथुरा रोहिणी को बताया जाता है तो रोहिणी बड़ी विचलित हो जाती है, वो कहती है कि कृष्ण और बलराम को पुनः मैं देखोगे इसका बड़े बड़ा आनंद हो रहा है पर यशोदा तुमसे विरह तो मैं सहन नहीं कर पाओगे, वास्तव में हम दो एक के समान ही हैं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। यशोदा माई रोहिणी को आलिंगन करती है तो कहती है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी कृष्ण को मेरी गोद में नहीं बिठा सकती, पर अगर तुम कृष्ण को तुम्हारी गोद में बिठा लोगे तो हम एक तरह से एक ही आत्मा ही दो शरीर में है। अभी 10 साल तक वो साथ में रहे हैं, साथ में उन्होंने कृष्ण बलराम की सेवा की है और हर जो विचार था यशोदा माई जो थी नंद महाराज जो थे उम्र में वसुदेव से थोड़े बड़े थे, यशोदा माई जो रोहिणी से उम्र में बड़ी थी तो वो वरिष्ठ थी एक तरह से, यद्यपि बलराम जी जो रोहिणी के पुत्र थे वह कृष्ण से बड़े थे पर रोहिणी से बड़े यशोदा माई थी उम्र में, तो वो वरिष्ठ रानी के समान थी। तो कहते हैं वास्तव में जो हम दोनों का संबंध है हम वास्तव में एक आत्मा जैसे दो शरीर में हैं, तो मैं तो कृष्ण का दर्शन नहीं कृष्ण को देख नहीं सकती, कृष्ण के बाल को सूंघ नहीं सकती, कृष्ण को आलिंगन नहीं कर सकती, पर तुम मेरी ओर से कर लोगे तो मुझे संतुष्टि होगी और कृष्ण को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, कृष्ण अकेले है वहां पर वृंदावन से दूर चले गए हैं, मैं तो जा नहीं सकती, कृपया आप जाओ। तो फिर यशोदा माई जो होती है कृष्ण और बलराम दोनों के लिए बहुत उनके जो मनपसंद व्यंजन है बड़ा बहुत व्यंजन बनाती है और फिर उनके लिए उनके जो प्रिय वस्त्र होते हैं नए नए वस्त्र बनाती है और बहुत से इस तरह सामग्री रोहिणी के साथ भेजती है। और जब रोहिणी जब आती है इस तरह से वृंदावन से मथुरा तो कृष्ण और बलराम वह भी तो रह तो रहे हैं द्वारका मथुरा में और उनका जो लीला है बड़ी आश्चर्यकारक लीला है वहाँ पे, एक तरह से क्या है ऐसे मान लीजिए वो दो व्यक्ति एक शरीर में हैं, कैसे एक तो वो अभी राजा के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, राजा के सलाहकार कैसे जो उग्रसेन है राजा है और उसके सलाहकार उसके संरक्षक के रूप में जो है वो बड़े 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 क्षत्रियो कंस है, कंस का उन्होंने वध किया है और बड़े बड़े क्षत्रियों को वो मारने में सक्षम है, तो यह तो उनकी शक्ति और सामर्थ्य के भाव में है, पर उसके साथ साथ हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है पीछे, उसके साथ साथ जो वो छोटे बालक के रूप में है, लगभग 10 साल के बालक है, तो 10 साल के बालक का जो भाव है कि जो लीला है वो अभी कर ही नहीं रहे थे। तो पहले रोहिणी को देखते हैं तो छोटे बालक जैसे माँ को देखते हैं तो दौड़ते जाते हैं, तो एक तरह से वो तो बड़े क्षत्रिय योद्धा है, बड़े सम्मान से और गर्व से रहते हैं, पर दूसरे छोटे बालक से दौड़ते दौड़ जाते हैं, रोहिणी के पैर में जाके आलिंगन करते हैं उनको, कि सारी को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि आप आ गए माँ, आप आ गई। और फिर जो रोहिणी होती है कृष्ण बलराम को देख के उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वह कृष्ण बलराम को स्मरण कर रही है, साथ साथ यशोदा को स्मरण कर रही है। और फिर रोहिणी जो होती है वह कृष्ण और बलराम वह सब वृंदावन की स्मृति लीलाओं के स्मरण में मग्न हो जाती है, और वो कृष्ण बलराम उसे थोड़ा सांत्वना मिलती है। अभी रोहिणी सोचती है कि कृष्ण बलराम छोटे बालक है और उनका जो हृदय है वह वृंदावन में है, पर उनके आजू बाजू में जो सब लोग हैं मथुरा वासी, वह तो सारे ब्रजवासियों को बड़े संशय के भाव से देख रहे हैं, क्योंकि मथुरा वासी को हमेशा भय होता है कि ये कृष्ण हमको छोड़ के वृंदावन तो नहीं चले जाए, और उनको लग रहा होता है कि ये ब्रजवासियों ने कृष्ण को क्या जादू कर दिया है, ये हमारा बालक था वो हमारे घर में आ गया है पर आनंदी रहने की जगह हमेशा वृंदावन का स्मरण कर रहा है। तो इसीलिए अभी कृष्ण बलराम अपना कर्तव्य जो है वसुदेव देवकी सारे यदुवंश के प्रति कर्तव्य तो कर रहे होते, संरक्षण कर रहे होते, पर जो हृदय होता है वो वृंदावन में होता है, और हृदय वृंदावन में होता है। तो रोहिणी सोचती है कि जो इस सारे यदुवंशों को अगर पता चलेगा कि कृष्ण बलराम के प्रति उन कितना ब्रजवासी प्रेम करते हैं, उन्हें उन्होंने कोई जादू नहीं किया है कृष्ण पे, वास्तव में कोई जादू है तो ये प्रेम का जादू है, तो वो इस तरह से क्या रोहिणी क्या सोचती है, वो मैं थोड़े ब्रजवासियों के जो महिमा है, ब्रजवासियों के जो प्रेम है उसका थोड़ा वर्णन करती हूँ। तो इस तरह जो वर्णन करने वाले होते करने लग जाती है, वो देखिए वृंदावन के बाद इतना प्रेम करते हैं वो कृष्णा बलराम से, तो वसुदेव और देवकी जो होते हैं उनको अभी तक भय होता है कि कृष्ण कहीं चले तो नहीं जाए वहां पे, तो इसलिए कुछ बोलते नहीं है, और वो कुछ बोलते नहीं है तो वहां पे जो बाकी स्त्रियां होती है, बाकी यदुवंश की जो राजा होते हैं उनकी रानियां होती है, वो कहती है हे रोहिणी ऐसे लगता है कि तुम जब वृंदावन में रह रही थी तो तुम जो वृंदावन वासी ने तुम्हें वृंदावन का माखन और दही खिला के उनके पक्ष का बना लिया है, इसीलिए तुम अभी सब उनके पक्ष की बातें कर रही हो, तुमको अगर माखन चाहिए तो हम भी माखन दे देंगे। तो अभी जब ऐसे सुनती है रोहिणी तो सोचती है कि अभी तो मैं यहाँ पे ब्रजवासियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। तो इस तरह से जब वो चर्चा कर रहे होते हैं तो कृष्ण बलराम तो क्या करते हैं, अभी नंद महाराज वह अपने जासूस संदेशवाहक भेजा करते हैं, तो हर दिन संदेशवाहक भेजा करते कि कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं, कृष्ण बलराम ठीक है या नहीं है। और ये संदेशवाहक क्या होते हैं, वो आते हैं अब मथुरा और वृंदावन पास में ही है, अभी संदेश वहां से आते हैं तो बाकी मथुरा वासी सोचते हैं क्यों आ रहे हैं, वो उनकी तो इच्छा होती है कि वृंदावन को कृष्ण पूरा भूल जाए, तो इसीलिए वो जो संदेश वहां से आते हैं वो किसी को और को पूछते भी नहीं है क्या कृष्ण करे, वो देखते हैं कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को कुछ यशोदा माई कुछ दिया देते हैं, कृष्ण से बातचीत करते चले जाते हैं। और फिर कृष्ण बलराम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे वृंदावन से इतना पास में रहेंगे तो बार बार वृंदावन जाने की इच्छा होगी हमें, और सोचते हैं कि अभी अगर मुझे अगर हम यहाँ पे मथुरा में रह रहे तो मथुरा में जो मेरे कर्तव्य है पूरा करना चाहिए मुझे, तो इसीलिए मुझे गुरुकुल जाना चाहिए। तो इसीलिए वह वसुदेव देवकी से कहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, और फिर वहां से वो जाते हैं सीधा, तो अभी जो द्वारका अभी जो अवंती है वह जो सोचते हैं अभी कृष्ण की मेरे गुरु कृष्ण बलराम जी बातचीत करते कि अगर हमें शिक्षा लेनी है तो हमारे गुरु कौन होने चाहिए,
तो गुरु कौन होना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर रहे होते।
हरे कृष्ण। तो बोलते हैं कि व्यासदेव जी बड़े महान, चाहे वो तो बड़े पंडित है, वह हमारे गुरु बन सकते हैं।
तो सोचते हैं कि वास्तव में वह सोचेंगे कि हम ही भगवान है, तो हमको अच्छे से उपदेश नहीं देंगे, तो इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो जानते नहीं है कि वास्तव में हम कौन है, जानते नहीं है, तो वो अच्छा हमें अच्छी तरह शिक्षा देंगे। और फिर सोचते हैं कि व्यासदेव वैसे भी एक वैष्णव है, तो वो वैष्णव सिद्धांत पूरा जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, संदीपानी मुनि पर जाएंगे। संदीपानी मुनि शिव जी के भक्त है, तो शिव जी की असली कृपा क्या है, तो शिव जी की भक्ति कर रहा है, शुद्ध भाव से शिव जी की भक्ति करता है, तो शिव जी उनको कृष्ण की ओर ले आते हैं। तो इसीलिए वे संदीपानी मुनि ने शिव जी की बहुत अच्छी से भक्ति की है, तो इसीलिए जाएंगे हम वहां पे, बाह्य रूप से हम उनका शिक्षण लेंगे, पर हम अंतरंग रूप से संदीपानी मुनि को विष्णु भक्ति प्रदान कर देंगे। तो ऐसे भाव से बोलते हैं, वहां से दूर चले जाते हैं और फिर जाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
जो हमने पहले शुरुआत में श्लोक बोला हरे कृष्णा,
हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
तो सोचते हैं कि संदीपानी मुनि जो है हम उनके पास जाएंगे, तो वसुदेव देव की कहते हैं, वसुदेव कहते हैं कि हम बड़ा रथ आपके लिए बनाएंगे, रथ से आपको लेके जाएंगे। तो जो इनका आश्रम संदीपानी का मुनि का आश्रम है वो उज्जैन जो भाग है वहाँ पे है, तो वहाँ से भी मथुरा से उज्जैन काफ़ी दूर है, अच्छा रथ बनाएंगे। तो कृष्ण कहते, बलराम कहते नहीं, अभी हम ब्रह्मचारी का व्रत स्वीकार कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी का व्रत स्वीकार कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें ब्रह्मचारी को तपस्या करनी चाहिए, इसीलिए हम पैदल जाएंगे। और वो कहते हैं कि उतना ही नहीं, हम नहीं चाहते कि अगर आप रथ में लेके जाएंगे हमें, तो उनको पता चल जाएगा कि हम यदुवंश से आए हैं, नाम के पुत्र है, तो वो हमको बहुत आदर देंगे, हमें ऐसा आदर नहीं चाहिए, हम वहाँ पे एक शिष्य के रूप में रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम पैदल जाएंगे। तो वसुदेव चिंता में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप पैदल जाओगे इतना दूर, पैदल देवकी बोले इतना दूर कैसे जाओगे आप पैदल, चिंता मत, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम वृंदावन में थे तो हम खेलते थे कूदते थे, तो बहुत दूर दूर जाते थे, आप चिंता मत करो। वो कहते हैं अगर आप अकेले जाएंगे खतरा आ जाएगा, बोलेंगे वास्तव में कहते कि कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे साथ में अगर आप रथ भेजोगे, सैनिक भेजोगे, तो उससे खतरा ज़्यादा होगा। क्यों? बोले उससे पता चल जाएगा लोगों को कि आप सारे हमारे शत्रु को पता चलेगा कि हम कि सब लोगों को पता चलेगा कि हम यदुवंश के हैं, और फिर सारे लोगों को हम पता चल जाएगा, और फिर जो जरासंध है उनको भी पता चल जाएगा, उसको पता चलेगा तो शायद वो संदीपानी मुनि के आश्रम में आके आक्रमण कर देगा, तो इसीलिए चाहते हैं कि हम अकेले चले जाएंगे, पर तुम्हारा संरक्षण कौन करेगा? तो कृष्ण कहते हैं कि अगर बलराम जी मेरे साथ में है तो मान लीजिए मेरे साथ 10 लाख सैनिक हैं, और अगर मैं बलराम जी के साथ में हूं, नहीं वो कहते मैं बलराम जी के साथ में हूं तो मेरे साथ 10 लाख सैनिक है, और अगर बलराम जी मेरे साथ में है तो मेरे साथ तो 1 करोड़ सैनिक है। मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हम दोनों की शक्ति जो है साथ में होगी तो कोई हमारा सामना नहीं कर सकता है। और वो बलराम जी को ज्यादा श्रेय देते हैं कि बलराम जी है साथ में, बलराम जी है, बलराम जी के सामर्थ्य क्या है, वह 1 करोड़ सैनिकों के समान है, वो बलराम जी बड़े शक्तिशाली है, वो कहते हैं। इस तरह से वो बलराम जी के साथ चलने लगते हैं, और जब जा रहे होते बलराम जी के साथ, तो फिर वो वृंदावन से अभी दूर जा रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं वृंदावन की स्मृति और तीव्र हो रही है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में सब चीज़ें जो होती है वो विलक्षण होती है, कि जैसे वो कहते भगवान कृष्ण की वेणु जो है उसकी क्या मधुरता है, उसकी विशेषता क्या है, वेणु से ध्वनि आती है, ध्वनि का जो ध्वनि होती है जैसे वह ध्वनि का प्रवाह उसी तरह से होता है जैसे नदी का प्रवाह होता है। पर साधारणतया कोई नदी का प्रवाह हो रहा है और नदी इस तरह से बह रही है तो नदी का प्रवाह जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में सब चीज़ें खींची जा देती हैं। तो और उसमें कोई फल फूल डाली गिर गई है तो जिस दिशा में प्रवाह हो रहा है उस दिशा में नदी के प्रवाह की दिशा में ही दो फल फूल डाली जाएंगे। पर कृष्णा आपकी जो वेणु है वेणु का प्रवाह इतना अद्भुत है कि वेणु का प्रवाह जिस दिशा में होता है सब लोग उसके विपरीत दिशा में खींच जाते हैं। तो वेणु एक दिशा में जाती है प्रवाह, पर सब लोग वेणु की प्रवाह आपसे दूर जा रहा है और सब लोग उस प्रवाह से आपके ओर खींच जा रहे हैं। तो कृष्ण वृंदावन से दूर जा रहे हैं पर वृंदावन उनके हृदय में और करीब आ रहा है, वृंदावन की स्मृति और बढ़ रही है। और गोपाल सिंह में वर्णन आता है कि बलराम जी का रूप क्या था, बलराम जी का जो चेहरा था वह एक बहुत ही सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान था, उनकी जो आंखें थी वह एक बिजली के समान थी, उनके जो बाल थे वह एक घने बादल के समान थे। अब और कृष्णा के जो कृष्ण का जो वर्ण का रंग है वह बलराम जी के बालों का रंग है, मतलब सांवला। और कृष्ण के और बलराम जी का जो शरीर था संपूर्ण वह सफेद बादल के समान था, और बलराम जी के जो सारे शरीर से कांति निकल रही थी वह एक सूर्य के समान तेजमान थी। तो उनका चेहरा चंद्र के समान था और उनके शरीर से कांति जो निकलती थी वो एक सूर्य के समान कांति निकल रही थी। और इस तरह से कृष्ण बलराम गांव 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 चलते चलते जाते हैं और वे पहुंचते हैं संदीपानी के आश्रम में। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो संदीपानी मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और सब ब्राह्मण भी वहां पे है और देखते हैं कि इनके शरीर से इतनी ज्योति आ रही है, कौन है दो व्यक्ति। और फिर देखते हैं कि ये तो बड़े विशिष्ट अजीब लग रहे हैं, उनके चेहरे से इतनी ज्योति आ रही है लगता है कि वह तो बड़े बहुत ही महान हस्ती है, पर अगर देखते हैं तो इनका शरीर इतना कोमल लग रहा है, ऐसा लगता है कि बचपन से ये मक्खन में खेल रहे हैं। पर इनका इतना शरीर कोमल है पर साथ साथ कोमल होते भी बड़ा बलवान लगता है इनका शरीर। और ये जो सफेद है सफेद वर्ण का जो व्यक्ति है उसका सौंदर्य देख के तो मेरा मन पूरा आकर्षित हो गया है, कौन है ये। और फिर वे आके उनको प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हो। तो कृष्ण बलराम ये दोनों साथ में है। तो कैसे होता है अगर हम देखते हैं लीला में प्रधान लीला कृष्ण लीला करते हैं, बलराम जी उनके सहयोगी के रूप में है, पर कई बार क्योंकि तो बलराम जी बड़े व्यक्ति है तो कृष्ण बलराम जी को कई बार बोलने देते हैं। तो जब जब ही इसे कोई औपचारिक या व्यवहारिक भाव होता है तो तभी कृष्ण बलराम जी को हमेशा आदर देते हैं और उनको बोलने का मौका देते हैं। तो कृष्णा अभी यहाँ पे कृष्ण बलराम साथ में आए हैं तो वो कहते हैं कि एक यदुवंश का एक व्यक्ति है उसके हम संतान हैं, तो कौन है वो बताते नहीं है वो। और फिर वो कहते हैं कि वो उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है। तो अभी खजाना क्या बोलते हैं, वसु का अर्थ है खजाना, वसुदेव मतलब जो खजाने के समान दान देते, अनेक अर्थ है वसुदेव के पर एक अर्थ है वसु मतलब खजाना, वसुर वसुमना सत्य ऐसे ऐसे विष्णु सहस्र नाम में वसु ये एक विष्णु का भी नाम है तो वसुदेव। तो फिर संदीपानी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते समझ वहाँ पे सब तो समझ जाते हैं कौन है ये। पर फिर वो उनको अभी आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में आप रहना चाहिए, और फिर रहते हैं। और कृष्ण बलराम वो अभी कहते हैं कि तुम्हें अभी भिक्षा लेने जाना चाहिए। तो जब भिक्षा लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, बाकी सब विद्यार्थी जो होते हैं भिक्षा मांगते हैं तो थोड़ी थोड़ी भिक्षा मिलती है, पर कृष्ण बलराम इतने सुंदर होते हैं उनको जब सारे अवंती के पुर के सब लोग देखते हैं तो इतनी सारी भिक्षा देखते हैं तो बाकी सब बालक कहते हैं कि अभी आप ही भिक्षा लेने जाओ और आप ही सबके लिए भिक्षा लेके आ जाओ। तो जहाँ भी कृष्ण बलराम जाते हैं सबके हृदय को वो जीत लेते हैं। और फिर 64 दिनों में कृष्ण तो सारी जो अलग अलग प्रकार के कलाएं हैं सीख लेते हैं। और फिर वहीं पे कृष्ण और बलराम अनेक और संबंध बनाते हैं। एक तो संबंध संधिपान में संबंध बनाते हैं और उसकी बहुत लीलाएं हैं, पर एक और संबंध वहां पे होता है सुदामा से। अभी जो गोपाल चंपू में सारी जो कृष्ण लीला है वो ब्रज भाव से बताई गई है, तो वो बताते हैं गोपाल जीव गोस्वामी बताते हैं कि वहां पे बहुत से विद्यार्थी थे, तो सुदामा से कृष्ण की मैत्री इतनी क्यों बढ़ गई, बाकी सब विद्यार्थियों से इतनी मैत्री क्यों नहीं हुई, बाकी सब विद्यार्थी उनका कोई वर्णन नहीं आता दशम स्कंध, सुदामा के लीला का वर्णन आता है 81वें अध्याय में दशम स्कंध के वापस। बोलते हैं कि कृष्ण हमेशा वृंदावन के भाव में थे, ब्रजवासी को स्मरण करते थे, और वहां पे उनको वृंदावन का स्मरण देने वाला एक ही व्यक्ति थे बलराम जी, और कोई था ही नहीं। पर कहते एक और व्यक्ति था, अभी कृष्ण का एक सखा है वृंदावन में, उसका नाम है सुदामा। तो कहते हैं ये जो ब्राह्मण बालक था सुदामा, उसके नाम से कृष्ण को वृंदावन के सुदामा की याद आती, वृंदावन की याद आती थी, इसीलिए क्या होता था वह इस सुदामा को बहुत स्नेह करते थे और उसका संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया। उसे कहते हैं कि पांच पांडव जो पांडव थे उनमें से अगर हमें धर्मनिष्ठता देखनी है तो युधिष्ठिर बहुत धर्मनिष्ठ थे, तो कृष्ण को सबसे प्रिय अर्जुन क्यों थे, अर्जुन क्यों सबसे प्रिय थे, तो कहते हैं क्योंकि वृंदावन में कृष्ण के एक सखा है अर्जुन नाम के, तो वृंदावन में कोई कृष्ण के सखा का नाम युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव नहीं है, तो जो अर्जुन थे ये अर्जुन कृष्ण को ब्रजवासी अर्जुन का याद दिलाते थे, इसीलिए अर्जुन को बहुत प्रिय। ऑफकोर्स अर्जुन की भी अर्जुन की बहुत महान भक्ति है, पर यहाँ पे हम जो गौड़िया भाव है कि वैष्णव ब्रज आचार्य वैष्णवाचार्य ब्रज भाव सब जगह में देखते हैं। तो फिर उसके बाद में तो दिन भर शिक्षा ग्रहण करते थे वो, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु की सेवा करते थे, और शाम को आश्रम में आकर जो वृंदावन जब आश्रम में आते थे कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम एक दूसरे का आलिंगन करते थे और ब्रजवासी का स्मरण करते थे, और फिर इस तरह से अपने दिन गुजारते थे। उसके बाद में लंबी कहानी है, पर वो अपने गुरु के शिष्य को गुरु के दक्षिणा देते समय क्या करते हैं, अपने गुरु के पुत्र को पुनः प्राप्ति करते हैं, और फिर वो लौट के आते हैं पुनः मथुरा, और जब मथुरा लौट के आते हैं तो वो रोहिणी से जाके सुदेव देव के से जाके मिलते हैं, फिर रोहिणी से जाके मिलते हैं, और रोहिणी को पूछते हैं कि क्या वृंदावन से कोई आया था, वृंदावन से कोई संदेश मिला आपको, कि वृंदावन की याद आ रही, तो बोलते हैं कि वृंदावन संदेश वहाँ आ रहे थे पर वो आपको देखते थे, आपको उन्हें घूमते थे और आप कहीं नहीं मिलते थे, तो वो विस्मित हो जाते थे और चले जाते थे। तो बोलते क्या हुआ वृंदावन ब्रजवासियों को चिंता लग रही होती, मैं कहाँ चला गया, तो उन्होंने कृष्ण ने कहा होता था, कृष्णा ने कहा था रोहिणी को कि आप ब्रजवासियों को बताओ मत कि मैं इतना दूर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना दूर गया तो उससे क्या होगा, ब्रजवासियों की चिंता और बढ़ जाएगी, मैं कैसा होगा, कहाँ करूँ, क्या कर रहा होगा, चिंता और बढ़ जाएगी, इसलिए आप किसी को बताओ मत। तो बोलते थे कि रोहिणी कहती है कि ब्रजवासी क्या दशा होगी मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं है तुम कहीं और गए हो, और जो आप कहीं वृंदा आप मथुरा में कहीं दिख भी नहीं रहे हो, तो क्या हुआ है उनको पता नहीं है। अभी हम क्या करें, राधा गिरिधारी भगवान की। तो इस तरह से नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की इच्छा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। जब कृष्ण और बलराम जी ये रोहिणी की चिंता को देखकर उनकी चिंता और बढ़ जाती है, कृष्ण बलराम बोलते हैं रोहिणी से, कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक विचार है, मैं हम दोनों चिपके से वृंदावन जाके आ जाएंगे, हम चिपके से वृंदावन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो रोहिणी बोल रहे थे मैं भी यही सोच रही थी, पर समस्या है, क्या समस्या है, बोलते हैं कि वसुदेव और देवकी का यही भय है हमेशा, और हमेशा आपको देखने के लिए आपको पता हो ना पता हो जासूस आपको देख रहे हैं। और अगर आप वृंदावन चले जाएंगे तो उससे दो पर समस्या आ जाएगी, एक तो वसुदेव देवकी भयभीत हो जाएगी कि आप लौट के आए कि नहीं, और आप लौट के आ भी गए तो उनको हमेशा भय बना रहेगा कि आप पुनः चले जाएंगे और आप उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे। आपको नंद महाराज ने बताया है कि आप वसुदेव देवकी जैसे आदेश देंगे उसका पालन करो, वो आपके माता पिता है के समान है, इसीलिए आप उनके आदेश का उल्लंघन करना उचित नहीं है। तो कृष्ण बलराम और तो पूछने लगते क्या करें अभी हम, तो बलराम जी कहते हैं कि ऐसे तो मुझे लग रहा है कि हमेशा मेरे हृदय में संघर्ष चल रहा है, क्या मेरे पैर मानो दौड़ रहे वृंदावन के जाने के लिए, पर मुझे मेरे इच्छा शक्ति से मेरे पैरों को रोकना पड़ रहा है, कब तक रोक पाऊंगा मुझे पता नहीं। तो कृष्ण जी क्या करें, और तभी अचानक कृष्ण को स्मृति आती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके पास अपने ही गले में चिंतामणि है पर वह भूल गया चिंतामणि को और सोच रहा हूँ कुछ पैसा है कहीं मेरे पास, पैसा है कहीं, पैसा है कहीं मेरे पास, क्यों कहते मेरा एक पार्षद है जो समझे मेरा मेरा भाव समझता है और मैं उसको कैसे भूल गया, वह पार्षद जो है वह मेरे ऐश्वर्य को भी समझता है मेरे माधुर्य को भी समझता है, मुझे अगर वृंदावन में किसी को भेजना है तो ऐसे पार्षद को भेजना चाहिए जो मेरे ऐश्वर्य और मेरे माधुर्य दोनों को समझेगा, अगर वो सिर्फ मेरे माधुर्य को समझता है तो फिर रजवासियों के प्रेम को देखकर वो इतना व्यथित हो जाएगा कि वो रजवासियों को सांत्वना नहीं दे पाएगा, पर अगर वो मेरे सिर्फ ऐश्वर्य को समझेगा तो फिर वो रजवासियों के प्रेम को वो अनुचित समझेगा, क्योंकि भगवान है इसके अपने पुत्र के समान कैसे मान रहे हैं इसको, तो इसीलिए मुझे एक ऐसा पार्षद चाहिए जो मैं हमारे मेरे ऐश्वर्य को समझता है मेरे माधुर्य को समझता है, और ऐसा पार्षद कौन है, उद्धव। और फिर कृष्ण बलराम रोहिणी बातचीत करते हैं, हाँ उद्धव बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर वो उद्धव को बोलते हैं, उद्धव के पास जाते हैं कृष्ण बलराम से, उद्धव का आलिंगन करते हैं, से कहते हैं कि तुम वास्तव में, तुम जो प्रख्यात श्लोक आता है तो कहते हैं कि उद्धव से कृष्ण कि जितने मेरे शुद्ध भक्त नारद जैसे भक्त है, जितने लक्ष्मी देवी मुझे प्रिय है, जितने बलराम जी मुझे प्रिय है, उससे उस बलराम जी ने जितने शेष मुझसे प्रिय है उनसे अधिक तुम मुझे प्रिय हो उद्धव, कोई तुम्हारे इतना प्रिय नहीं है मुझे, तुम मेरे हृदय को जानते हो, तो कृपया तुम जाओ वृंदावन और तुम जाके वृंदावजवासियों को शांत बना दो। तो इस तरह से कृष्ण बलराम योजना बनाते हैं, कृष्ण अपने संधि देते उद्धव को, उद्धव जाते हैं, तो उसका वर्णन जो है 47वें और 48वें अध्याय में आता है। तो अभी तक हमने जो वर्णन किया है पूरा ये दशम स्कंध के 40वें अध्याय से 47 अध्याय तक हो रहा है, 8 अध्याय के कुछ कुछ भागों का वर्णन किया हमने, कुछ बहुत से भागों का वर्णन नहीं किया हमने, खास करके हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण और बलराम का कितना घनिष्ठ प्रेम था और वो ब्रज के भाव पे केंद्रित था। तो उद्धव जब जाते हैं संदेश देते हैं सांत्वना होती है थोड़ी बहुत उनको, तो जरासंध आक्रमण करने आते हैं, तो आक्रमण करने आते हैं तो यशोद तो कई बार आक्रमण करते हैं, अंत में आक्रमण करने आता है जरासंध, तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बलराम द्वारका में एक किला बना लेते हैं और सारे द्वारकावासी सारे मथुरावासी को द्वारका में स्थानांतरित कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो दशम स्कंद का में थोड़ा ही वर्णन है इसका, जब वो द्वारका में रह रहे होते हैं तो नंद महाराज को पता चला कि कृष्ण द्वारका में चले गए, तो ये क्या हो गया, द्वारका तो इतना दूर है, अभी हमें तो यहाँ पे आसानी संदेश मिलता था कृष्ण कैसे है, पर ये द्वारका में चले गए तो संदेश कैसे मिलेगा, अभी क्या करें हम। तो इस तरह से जब चित्र गए तो वो कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि देखिए मैं 2000 संदेशवाहक रखूंगा और वो हमेशा दौड़ते दौड़ते वृंदावन से द्वारका जाएंगे, द्वारका से वृंदावन आएंगे। तो फिर ये दौड़ते दौड़ते जाते हैं कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को जब पता चलता है कि 2000 संदेशवाहक रखे हैं तो कहते हैं कि कितने भी संदेशवाहक हो गए तो भी अंतर इतना दूर है समय लग जाएगा, तो कहते हैं कि मैं आपको जितने संदेशवाहक है उतने घोड़े दे दूंगा और घोड़े से आप जा सकते हैं, तो तेज से जाओगे आप और संदेश मुझे भी वृंदावन का संदेश मिलेगा और रजवासी को मेरा संदेश मिलेगा। तो एक बार तो लगभग हर रोज द्वारका से कोई संदेशवाहक आ रहा होता है, वृंदावन से द्वारका कोई संदेशवाहक आ रहा होता है और संदेश यहाँ पे चल रहे हैं इस तरह से। और एक बार तो द्वारका इंतजार कर रहे हैं और वे देखते हैं कि संदेशवाहक आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। कुछ समस्या तो नहीं आ गई, किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, क्या हो गया? तो अंत में एक संदेशवाहक आ जाता है। संदेशवाहक कौन है ये, क्या हो रहा है ये? जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। देखिए जब हम द्वारका में थे तो वहां पे उत्सव चल रहा था और उत्सव में हम देख रहे थे सहभागी, तभी कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आ गए और दौड़ गए कृष्ण बलराम जी के पास, कृष्ण के पास आ गए और कहने लगे कि हमने आज एक ऐसा दृश्य देखा कि आज तक कभी दृश्य देखा ही नहीं। अरे क्या हुआ? बोला हमने एक पुरुष और एक स्त्री देखा है जो द्वारका के बाहर के वन में है और वह जो साल का वृक्ष है उतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा मतलब जैसे गगनचुंबी इमारत होती है उससे भी ऊंचा हो। बोले कि वो इतने ऊंचे तो अगले कोई व्यक्ति देखे ही नहीं आज तक, एक पुरुष है और एक स्त्री है। और बोले कि वो कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से किसे सुनते हैं तो ये जो समाचार होता है सारे द्वारकावासी में फैल जाता है, सारे द्वारकावासी उत्सव से दौड़ दौड़ जाते हैं देखने को। और देखते कौन है, देखते 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 ऊपर इतना ऊंचा व्यक्ति है। तो कृष्ण जो होते हैं वहां पे आते हैं तो बोलते हैं कि ये संदेश आप बता रहे कि हम भी वहां पे जाते हैं। उनके पीछे पीछे गए और हमने देखा कितना ऊंचा, सोचने लगे अरे इतना बड़ा होने कितने साल तक जिए होंगे। तो हम सोचने लगते हैं कि बालक होता है बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होगा कितना बड़ा होगा, कितना समय लग जाएगा सोचते हैं। क्योंकि क्या है अभी जो ब्रजवासी है वो विकास करते संदेशवाहक है, उनको पता नहीं है क्या चल रहा है। ये ऊंचे इतने ऊंचे का व्यक्ति है तो वो नीचे झुकता है, नीचे झुकते हैं कृष्ण के सामने प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं, मेरा नाम है रैवत। अगर आपने इतिहास सुना है तो इतिहास जो महान राजा है उनमें से मेरा नाम जो है बड़ा विख्यात है, आप जाना होगा रैवत राजा। तो मेरी जो पुत्री थी रैवती नाम की, वह इतनी गुण संपन्न थी तो मैंने देखा कि उसके लिए उचित कोई वर है ही नहीं, तो सारे राजाओं में कोई वर नहीं मिला उसके उचित। तो इसीलिए मैं सोचा कि उसके लिए उचित वर कैसे प्राप्त करें। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं सीधा इस ब्रह्मांड में सबसे विद्वान व्यक्ति जो है वह है ब्रह्मा जी, तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा और उनको पूछूंगा कि मेरी ये पुत्री है उसका विवाह किससे करें, तो राजकुमारी के लिए उचित राजकुमार कौन होगा। तो मैं जब ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी वहां पे एक उत्सव नृत्य चल रहा था, नृत्य देख रहे थे और नृत्य देखते हुए वो मग्न हो गए, मैं भी मग्न हो गया। कुछ ही समय तक, कुछ ही पलों तक वो नृत्य चला, पर नृत्य जब खत्म हो गया मैंने मेरा निवेदन ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि, ब्रह्मा जी हंसने लग गए और कहने लगे कि वास्तव में मेरा जो एक पल है वहां, एक पल में जिस समय में आप यहाँ पे आए मेरा इंतजार कर रहे थे और इस समय वापस चले जाओगे तो दुनिया पृथ्वी समय में उसमें कितने सारी पीढ़ियां चली गई, जो भी उचित वर थे वो सब चले गए, अभी कोई है ही नहीं। तो अभी तो पृथ्वी पर कलयुग आ गया, कलयुग आने का समय आ गया है, कलयुग के पास ही आ गए हैं। तो बोलते अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूं। तो बोलते हैं कि फिर भी तुम्हारे जो पुत्री है उसके लिए एक वर बड़ा उचित है, वह है बलराम जी, उनके पास जाओ आप। सोचते कि बलराम जी, सोचते हैं कि कलयुग के जो व्यक्ति है वो तो बहुत छोटे हैं, अभी रेवती तो बहुत बड़ी है, क्या करेंगे। तो बोले है कृष्ण बलराम जी तो बड़े भाई है, वो तो साधारण नहीं है, वह तो विष्णु ही है स्वयं और उनकी शक्ति बड़ी अद्भुत है। तो जो छोटे कद के व्यक्ति है, एक भाई ने छोटे कद के व्यक्ति को बड़ा कर दिया, दूसरा भाई बड़े कद के व्यक्ति को छोटा कर देगा। क्या छोटे कद के व्यक्ति को बड़ा कौन है? जो कुब्जा थी वो वक्र थी, तो वो छोटे कद की हो गई थी, वो टेढ़ा होकर चलती थी वो। तो क्या किया कृष्ण ने, छोटे तो उसको बड़ा कर दिया, तो दूसरे भाई जो है जो बड़ा है उसको छोटा कर दिया। तो अब जाओ उनके पास। तो रेवत कहते हैं तो अभी ये सब चल रहा है, तो रेवती जो है वो शर्माती है, रेवती कृष्ण की ओर देख रही है, पर कृष्ण से दूर भी देख रही है, वो देख रही है कि बलराम जी अभी आने वाले हैं क्या, कि बलराम जी अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। तो फिर बड़े आदर सम्मान के साथ कृष्ण उनके उनको स्वागत करते हैं रेवत और रेवती को, और फिर वसुदेव देवकी से बात करते हैं, और वसुदेव देवकी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ ये उचित है, और स्वयं प्रस्ताव लेके आए तो स्वीकार करना चाहिए। फिर बलराम जी से कहते हैं वो कि आप विवाह करो। अभी बलराम और कृष्ण इनका योजना होती है कि वास्तव में हम विवाह नहीं करने वाले, तो ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहते, विवाह नहीं करने वाले। उनका भाव क्या होता है कि अगर हम विवाह कर लेंगे यहाँ पे तो हमको यहाँ पे द्वारका में ही रहना पड़ेगा, हमारा द्वारका में रहने का कोई योजना नहीं है। जैसे ही सारे असुरों का वध हो जाएगा तो हम जहाँ जाते हैं वृंदावन। तो इसीलिए तो उसका कोई विवाह करने का योजना नहीं होती। पर क्या होता है, ये असुर होते हैं, बहुत से असुर होते हैं, सबका वध करने में बहुत समय लगने जाता है, और फिर वसुदेव देवकी कहते हैं कि आपको जरूर विवाह करना चाहिए। तो इसीलिए अभी सोचते हैं कि बलराम जी आपके तो पुत्र कौन है, आप किसके पुत्र है उसमें कोई संशय नहीं है, आप तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे विवाह करना चाहिए। तो जब कृष्ण बलराम जी तो विवाह करना नहीं चाहते हैं, पर वो कृष्ण के निवेदन पे कृष्ण के आदेश को स्वीकार कर लेते हैं। और फिर बड़े विवाह होने जाते, उस दिन रात में जब रेवत और रेवती जहाँ पे सोए होते हैं वहाँ पे आते हैं बलराम जी अपने दिव्य शक्ति से रेवती को छोटा कर लेते हैं, फिर उनके उसके बाद में विवाह हो जाता है। पर विवाह होने के पहले वो सोचते हैं कि वास्तव में एक तरह से नंद महाराज इस समय भी हमारे माता पिता है, तो अगर हमें विवाह करना है तो उनसे भी इजाजत लेनी चाहिए। तो इसीलिए तेज संदेश वाहक को भेज देते हैं द्वारका से वृंदावन, और ये संदेश वाहक बता रहे होते हैं कि उन्होंने सोचा कि अभी कृष्णा अभी बलराम जी विवाह करना चाहते, तो उन्होंने इजाजत मांगी है आपसे। तो कम से सुनते तो नंद महाराज सुनते हैं, नंद महाराज कहते हैं कि हाँ यार, वो विचार में लग जाते हैं, सोचते हैं कि बलराम तो क्षत्रिय है, वह तो जरूर क्षत्रिय स्त्री से विवाह करेगा, पर कृष्ण किससे विवाह करेंगे? सोचते हैं कृष्ण किसी वैश्य स्त्री से विवाह करते हैं तो मतलब वो स्वीकार करते हैं कृष्ण की वो हमारे पुत्र है, और कृष्ण किसी क्षत्रिय स्त्री से विवाह करते हैं तो स्वीकार करें कि वसुदेव देव की पुत्र है। सोचते हैं कि कृष्ण भी किससे विवाह करेगी, बड़े भाई है, बड़े भाई का विवाह तो पहले होना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने विचार में मग्न होते हैं। फिर पूरे संदेश वाहक कहते हैं कि नंद महाराज क्या बलराम जी ने जो कृष्ण बलराम वसुदेव सब ने आपकी इज्जत मांगी है विवाह के लिए, बलराम जी विवाह के लिए, हाँ बलराम जी का विवाह जरूर हो जाना चाहिए। और फिर बलराम जी का इस तरह से बाद में विवाह हो जाता है। और फिर इस तरह से अनेक असुरों का वध होता है, पर बहुत से असुर और रहते हैं। फिर बाद में बलराम जी कहते हैं कि अभी तो कृष्णा मैं और विरह सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं वृंदावन जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में हर पल मुझे वृंदावन की याद आती है, और अगर संभव होता तो बहुत पहले मैं वृंदावन चला जाता, पर वास्तव में वृंदावन में जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वसुदेव देव की मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, और नंद यशोदा ने बताया, नंद महाराज ने बताया है कि वसुदेव के आदेश की मैं आपको कुछ करना नहीं चाहिए। पर कृष्ण कहते हैं कि शायद वसुदेव आपको इजाजत दे देंगे, क्योंकि उनको आपके वृंदावन जाने का भय नहीं है, जानते कि आप लौट के आ जाएगी, आप उनके ही पुत्र हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों ज्यादा विरह में नहीं रह सकते, तो अगर आप वृंदावन में हो गए और मैं यहाँ पे होऊंगा तो आप जरूर मेरे पास वापस आ जाओगे, इसीलिए शायद वो आपको ही जरूर देंगे, तो आप पूछ लो। तो बलराम जी जाते हैं, वसुदेव से कहते हैं कि मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, वृंदावन जाना है। तो वसुदेव कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि मैं कृष्ण को लेके आना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को आप ले जा सकते हो, कृष्ण को आप नहीं ले जा सकते। तो बलराम जी को बोले कृष्ण और मुझ में क्या फर्क है, अगर मैं जा सकता हूँ तो कृष्ण को भी जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण नहीं जा सकते, कृष्ण जाएंगे तो यदगतवान अनिवर्तन्ते ऐसे होता है, आध्यात्म जगत में जाता है वापस नहीं आता है, तो वसुदेव का भय होता है कि वृंदावन जाएगा तो कृष्ण वापस नहीं आएगा। तो बलराम जी को जाते, तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे करो, आप जाओ वृंदावन, और आप जाके क्या करो, ब्रजवासियों को सांत्वना दो। आप ब्रजवासियों के भाव को जानते हो और आप उनको बताओ कि मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। जब आप जाओगे तो आपके हृदय में मैं आपके साथ जाऊंगा और आप मेरी स्तुति करो उनको, उनको लोगे तो उससे उनको सांत्वना मिलेगी। और अगर स्तुति से मैं स्तुति से पर्याप्ति नहीं होगी तो मैं मेरा संदेश भी आपको दूंगा, संदेश आपको उनको सुनाऊं, संदेश से सांत्वना नहीं मिलेगी तो मैं स्वयं वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। और आप जब जा रहे हो तो आप ऐसे करो, आप एक क्षत्रिय के वेश में मत जाओ, आप एक वैश्य का वेश मानो और आप जाओ। और फिर कृष्ण और बलराम दोनों निकलते हैं और द्वारका से बाहर जाते हैं। कृष्ण बलराम से कहते हैं कि अभी तो आपको इजाजत मिल गई जाने की, पर पुनः किसी का आपको इजाजत नहीं रहेगी तो फिर कुछ समझ आएगा, आप जल्दी चले जाओ। तो फिर वो द्वारका से काफी समय तक बाहर दोनों साथ में आते हैं और आलिंगन करते हैं। कृष्ण बलराम जी के रथ को जाते हुए देखते हैं और उनके साथ कृष्ण का हृदय भी जाता है। और बलराम जी कृष्ण का स्मरण करते हुए एक तरह से कृष्ण से दूर जा रहे हैं, पर ब्रजवासी का स्मरण करते हैं तो उनको आनंद होता है और उनका रथ इतना तेज से जाता है कि मान लीजिए कि जो हवा की रफ्तार है उससे भी अधिक रफ्तार से, और कुछ ही समय में द्वारका से वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन के बाहर वो अपना रथ रखते हैं और फिर वहां पे जो एक गोपाल का गोप का वेश धारण करते हैं और फिर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं बलराम जी, और तभी जो बचपन में अनुसार लीला के उनका सारा स्मरण जो होता है, एक नदी जब उससे बाढ़ आ गई है, जितना तेजी से हवा जब आए तेजी से जितने प्रवाह से जल वहां पर फैलता है वैसे सारी स्तुतियां उनके चेतना फैल जाती हैं और वो दौड़ से दौड़ से वृंदावन जाते हैं। और जो सारे ब्रजवासी देखते हैं बलराम जी आ गए, बलराम जी आ गए, बड़े आनंद जाते हैं और वो जाके दौड़ते दौड़ते नंद महाराज यशोदा भाई को संदेश देते हैं। नंद महाराज यशोदा भाई दौड़ते बाहर आते हैं, बलराम जी उनको प्रणाम करते हैं और ब्रजवासी देख रहे हैं कि बलराम जी कहीं पीछे कृष्ण भी है क्या, देख रहे बाहर देखते कृष्ण नहीं है। तो फिर वो बलराम जी को आलिंगन करते हैं, बलराम जी कृष्ण बलराम यशोदा माई नंद महाराज से कहते हैं कि वास्तव में आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो और मैं माता पिता के विरह में इतना समय गुजार रहा हूँ, आज मैं विरह को अंत करता हूँ। और वो आलिंगन करते हैं हमको और अपनी आंखों से आंसू कमानो बाढ़ आ जाती है महावेश्वर माई का। और उनसे पूछते हैं कृष्ण कैसे है, यदुवंश कैसे है सब, और सारा जो समाचार देते हैं। नंद महाराज कहते हैं कि एक एक दिन जो है कृष्ण के विरह में हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं अभी और कितने असुर बचे हैं, कब कृष्ण आएंगे। तो कहते हैं बहुत असुर को कृष्ण ने मार डाला है, फिर भी अभी तक छह असुर बचे हैं। छह शाल्व है, जरासंध है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, कलिंग का राजा है, ऐसे छह असुर बचे, दुर्विदा है, छह बचे हैं, उनका वध करके कृष्ण जरूर आ जाएंगे। तो फिर तभी फिर दो महीने के लिए जो वृंदावन में बलराम जी रहते हैं, जब इसमें बलराम जी रहते हैं तो सारे ब्रजवासियों के वो अपने सुबह अपने नंद महादेश के घर में रहते हैं और दिन में वो अलग अलग जैसे जाके मिलते हैं, उन सबको जो विरह की अग्नि से है सांत्वना देते हैं। और कृष्ण बलराम से बताते हैं जो खास कर गोपियां हैं वह मेरे विरह को बहुत विचलित है, तो कृपया आप उनको सांत्वना दो। और वो कृष्ण कहते हैं कि जैसे मैंने रासलीला की है वैसे गोपियों के साथ आप भी रासलीला करो, उससे उनकी जो विरह की अग्नि है वो कम हो जाएगी। तो फिर बलराम जी कहते हैं कि वास्तव में मैं तो जो तुम्हारी स्मृति है उसकी पुनरावृत्ति तो मैं नहीं कर सकता, पर तुम नहीं जा सकते तो जो मैं कर सकता हूँ वहाँ पर जरूर करूँगा। तो फिर गोपियाँ कहती है बलराम आप आ गए बहुत अच्छा है। तो फिर बोलते हैं कि कृष्ण कैसे है, कृष्ण क्या वृंदावन को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, कभी हमें याद करते हैं वो। तो फिर गोपियाँ कहने लगती है वास्तव में कृष्ण हमें क्या याद करेंगे, कृष्ण तो अभी शहर के व्यक्ति बन गए, हमको तो भूल गए होंगे वो, और हमें खाम का ही सांत्वना देते हैं। उन्होंने उद्धव को भेज दिया कि अभी जल्दी मैं आ जाऊँगा और आज तक नहीं आए हैं, अभी हमें पता है कृष्ण तो हमें भूल गए, कभी वापस नहीं आएंगे। बलराम जी कहते हैं कि हे गोपिया तुम मुझे जानती हो, और मैं कृष्ण को जानता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, मैं कृष्ण के हृदय को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कृष्ण के विरह में कितना जल रही हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे विरह में कितना जल रहे हैं। तो कृष्ण हर समय आपका याद करते हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं आता है कि कृष्ण आपके बारे में बात किए बिना रहते हैं मुझसे, हमेशा कृष्ण आपका स्मरण कर रहे हैं। और इसीलिए कृष्ण ने आपको सांतवन के उद्धव को भेजा है, और वास्तव में इसीलिए कृष्ण ने मुझे भी भेजा है, कृष्ण ने मुझे भी भेजा है। वास्तव में मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, और संदेशवाहक के रूप में अगर भेजना है तो किसी कनिष्ठ व्यक्ति को भेजते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं भेजते। तो कृपा कृष्ण हम जानते हैं कि तुम कितने विरह में विचलित होगी, और किस तरह से तुम वास्तव में कृष्ण पर विश्वास ही खो बैठे हो कि कृष्ण आएगी या नहीं। तो तुम विश्वास करो कि मुझे संदेशवाहक के रूप में भेजा है, कृष्ण जरूर आएंगे। और यह देखो कृष्ण को संदेश भेजा है, उस संदेश में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें जरूर संशय हो रहा होगा कि मैं आऊंगा कि नहीं, पर मैं जरूर लौट के आऊंगा। मैं भले ही मैं मेरे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, पर भले ही मेरे वचन कभी झूठे हो जाए, पर मेरे जो महान भक्त है उद्धव, उद्धव के वचन को कभी मैं झूठा होने नहीं दूंगा। उद्धव मेरे इतना घनिष्ठ भक्त है, उन्होंने आपको संदेश दिया है, उन्होंने दोहराया है किसी दिन लौट के आएगा। और फिर भी अगर आपको सांत्वना नहीं मिल रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि बलराम जी जो है वह तो मेरे दाऊ जी है, मेरे बड़े भाई है, मैं उनके वचन को कभी भी झूठा नहीं होने दूंगा। तो मैंने वादा किया है कि वो आऊंगा, उद्धव ने वही वादा दोहराया है, अभी आज बलराम जी भी वादा दोहरा रहे हैं, तो मैं जरूर लौट के आऊंगा। आप कृपया हौसला मत खोइए, श्रद्धा मत खोइए, इंतजार किए मैं जरूर आऊंगा, मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। आपको संशय हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे द्वारका की रानियों से विवाह क्यों कर लिया है, मैंने रानियों से विवाह कर लिया है इसलिए आप सोचेंगे कि शायद मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, पर नहीं, वास्तव में मैं द्वारका की रानियों से इसलिए विवाह किया क्योंकि वह मुझे आपकी याद दिलाती है कि आपका जो स्मृति इतनी भी तीव्र होती है कि हर जगह मुझे आप ही देखते हो। जब द्वारका की रानियों के साथ हो तो मैं वो रानियों को नहीं देख रहा हूँ, मैं आप ही को देख रहा हूँ, और जरूर मैं आपके साथ लौट के आऊंगा जरूर। तो आचार्य ने बताते हैं कि ये सारा संदेश बलराम जी सारी गोपियों को देते हैं, और फिर जो गोपियाँ हैं इनमें दो विभाग है, कुछ गोपियाँ हैं, अधिकांश गोपियाँ जो है वो कृष्ण की गोपियाँ हैं, कुछ गोपियाँ हैं बलराम जी की गोपियाँ हैं। और फिर बलराम जी क्या करते हैं, जो जिस तरह से होली क्षेत्र में जो कृष्ण और बलराम ने रासलीला की थी, तो कृष्ण ने रासलीला की थी, जैसे बलराम जी ने रासलीला की थी, कृष्ण की गोपियाँ हैं कुछ, बलराम जी की गोपियाँ हैं कुछ, तो बलराम जी अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और वह देखकर जो कृष्ण की गोपियाँ हैं उससे देख के भी संतुष्ट हो जाती है, और वह स्मरण कर लेते कृष्ण ने कैसे हमसे लीला की, रासलीला की थी। और फिर कृष्ण ने बलराम जी से कहा होता है कि वास्तव में आपकी जो गोपियाँ हैं वह अभी आपने उनका उनको भी विरह में वो आपसे पीड़ित है, अभी आपसे पुनः मिलन हो रहा है तो फिर आप उनको पुनः विरह में मत डालो, तो इसीलिए आप उन गोपियों को स्वीकार करो। तो फिर बलराम जी कहते हैं कि ये संदेश नंद महाराज और वज के वरिष्ठ भक्तों को वरिष्ठ लोगों को देते हैं, और फिर वहाँ पे बलराम जी का उनकी गोपियों से विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है तो फिर बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बड़ा उत्सव नहीं करना, छोटा सा उत्सव करो आप विवाह के लिए। फिर बलराम जी अपनी गोपियों से विवाह करते हैं, और फिर उसके बाद में जब बलराम जी लौट के आते हैं तो एक आखिरी संदेश देते हैं कि कृष्ण जरूर लौट के आए, कृष्ण जरूर लौट के आएंगे। और फिर भगवान बाद में कृष्ण जब होते हैं शिशुपाल का वध करते हैं, फिर दंत वक्र का वध करने के लिए दंत वक्र जो होता है मथुरा के पास में आया होता है, और फिर वहाँ पर दंत वक्र के कवच करने के लिए मथुरा के पास में आते हैं, और अंतवक्र वध करने के बाद वही रथ लेके कृष्ण जो होते हैं वृंदावन लौट के आते हैं, और उनका जो पुनर्मिलन जो है ब्रजवासियों का वृंदावन में पूरा, वह एक बहुत ही मधुर लीला है, उसमें जो भक्ति के भाव है वह इतना दिव्य है तभी कृष्ण का गोपाल चंद्र वर्णन आता है, कृष्ण का सारी गोपियों से विवाह हो जाता है। और फिर तभी कृष्ण सोचते हैं कि अभी सारे रजवासी पुनः मुझसे विरह सहन नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। जो दारुक होता है, दारुक जो उनका सारथी होता है, उसके साथ वो रथ में आए हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं हमेशा उनको डर लगा रहता है कि दारुक को देखते हैं, रथ को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। क्योंकि पहले क्या हुआ है, पहले भी एक रथ आया था और रथ कृष्ण को लेके गया, वो रथ किस रहा था, अखरूर का रथ था। तो अभी भी एक रथ आया है, वो रथ लेके आया है, शायद वो रथ लेके जाएगा। तो कुछ वजह सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, ये कृष्ण के रथ के घोड़े हैं, उनको इतना प्रेम करेंगे कि घोड़े हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, कृष्ण शायद छोड़ के जाना चाहेंगे तो घोड़े मिल जाएंगे। तो दारुक देखते हैं कि ये ब्रजवासी है, ये मेरे घोड़े हैं, मेरे रथ के घोड़े हैं, पर मैं इनके घोड़ों की इतनी सेवा नहीं करता कभी, कि इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इतने ध्यान से सेवा कर रहे हैं, कितने ब्रजवासी के भक्ति हैं इनके प्रति। और तभी सोचते हैं कि अभी ये ब्रजवासी है, ये कभी सहन नहीं कर पाएगी मुझसे मेरा, इसलिए क्या करते हैं वो अपनी दिव्य शक्ति से संदेश भेजते हैं। फिर बलराम जी और उद्धव दोनों द्वारका से वृंदावन आते हैं, और वे सब जो उसी रथ पे बैठते हैं, और जो रथ होता है बहुत विशाल बन जाता है, इतना विशाल बन जाता है कि न केवल उसी रथ में कृष्ण, बलराम, उद्धव रहते हैं कि सारे ब्रजवासी आ जाते हैं, न केवल नंदमान यशोदा में सारे ब्रजवासी, सारे गोपियां जाती है, सारे गैया आ जाती है, और बड़ा विशाल भी होता है। और फिर वो रथ जो होता है, रथ को दारुक कहते हैं कि दारुक इस रथ को आप, रथ को आप तेज से लो। तो वो रथ निकलता है वृंदावन से, यमुना के तट पे आता है, और ये लोग देख रहे होते कि मान लीजिए एक समय वो यमुना के तट पे था और दूसरे समय यमुना को पार करते हुए अदृश्य हो जाता है। और जो रथ है वह रथ के साथ सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्ण, बलराम, उद्धव, ये सब आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में लौट जाते हैं। तो इस तरह से ये सब भगवत धाम चले जाते हैं। और फिर कृष्ण और बलराम अपने विस्तार करके, कृष्ण, बलराम, उद्धव और दारुक जो है वह पुनः द्वारका लौट के आते हैं, अपने आगे लीला करते हैं। तो इस तरह से बलराम जी जो है वह भगवान के बहुत ही भगवान ही है, और भगवान के सब लीलाओं में बहुत ही अंतरंग रूप से वो सहभागी होते हैं। और भगवान का जो वृंदावन का स्मरण है, वृंदावन का भाव है, उसमें वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो ऐसे जो बलराम जी है वह गुरु तत्व है, वह वास्तव में जीवात्मा है, उनको भगवान से पुनः मिलाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु है वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। और जिस तरह से बलराम जी ब्रजवासियों और कृष्ण के बीच संदेशवाहक बन के आए थे, उसी तरह से बलराम जी जो जीवात्मा है और भगवान के जी संदेश बन के गुरु के रूप में आते हैं। तो आज के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप कृपया हमें शक्ति दीजिए। बलराम इस शब्द का अर्थ क्या है, बल और राम। तो क्या है बल और राम, जो बल प्रदान करते हैं और जो राम प्रदान करते हैं। बल मतलब शक्ति और राम मतलब आनंद, तो दोनों प्रदान करते हैं। तो क्या है, हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो क्या हम किस तरह से फंसे हुए हैं कि हमें भौतिक चीज़ों में, भौतिक चीज़ों, भौतिक आसक्ति, भौतिक प्रलोभन में बहुत रुचि आ गई, उसमें बड़ी आसक्ति है। तो भौतिक प्रलोभनों को संघर्ष करने के लिए हमें बल चाहिए। तो वो जो बल है वो बलराम जी प्रदान करते हैं। और सिर्फ हम संघर्ष जिंदगी भर नहीं कर सकते, हम नहीं 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 प्रलोभनों कितना बोले, भौतिक आसक्ति कब तक हम नहीं बोल सकते हैं। साथ साथ हमें जो भगवान के संबंध है, भगवान की भक्ति है, उसमें आनंद मिलना है। तो वो जो आनंद है वह है राम। तो बलराम जी क्या करते हैं, हमारे भौतिक प्रलोभनों से संघर्ष करने के लिए हमें बल देते हैं, और भक्तिमय कार्यों में आनंद प्रदान करने में राम देते हैं। तो बलराम जी के दो आशीर्वाद हैं। तो बलराम जी के आशीर्वाद से हम भौतिक चीज़ों से अनासक्त हो सकते हैं और भगवान से आसक्त हो सकते हैं। तो यही हम बलराम से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कृपया जो शुरुआत में हम श्लोक बोला था वह श्लोक पुनः दोहराएंगे और इस प्रवचन को अंत करेंगे। राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो। जाने तव विक्रमम न जाने तव विक्रमम न जाने तव विक्रमम यथैक एकांशेन विधृत्या यथैक एकांशेन विधृत्या यथैकेकांशेन विधृत्या जगति जगत पते श्री बलराम जी आविर्भाव महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की बताए गौर प्रेमान बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो हम बड़े आभारी हैं इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु का, बड़ा सुंदर रमणीक रूप में बलराम जी का रमणीय लीला को स्मरण कराया है, उनका प्रेम कृष्ण के प्रति जो ब्रज के प्रति है उसे दर्शाया है। हम बड़े हृदय से चैतन्य चरण प्रभु का आभार प्रकट करते हुए जैसे हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरण प्रभु की जय, गौर हरि प्रेम।
सभी भक्तों के लिए प्रसाद है।